ॐ याम्यधाम देवगणाः पितरश्च उपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। अत्र भवताम सर्वेषाम् एकदा पुनः स्वागतम्। अस्माभिः चर्चा चर्चिता अनेकेषु विषयेषु सामाजिकी परंपरा वैदिकी परंपरा यथा दाय भाग है, पैतृकी संपत्ति कस्य स्यात्, पुत्रस्य वा दुहितु वा, तो तत्र अनेकेषु पक्षेषु प्रतिपादितम्। किंतु अन्ते निर्णय आसीत् कि तस्य पालनम स्यात्, तस्यः पालनम स्यात् दुहितु, अन्य तस्य धनमपि प्रयच्छेत्। किंतु यद् गृहं क्षेत्रम आदिकं वर्तते तत्र तस्य विनय न स्यात्, विनियोगे न स्यात् तस्यः कृते इति एषः आसीत् निश्चयः। अद्य मनुष्यः कस्मात्, मनुष्य विषये चर्चा चर्चते। अवयम सर्वे मनुष्यः, अत्र संदेह तो न वर्तते किं भो श्रीधर महोदय, संदेह तो न वर्तते। अस्तु, तो तरी यदि वयम मनुष्यः स्म, मनुष्यः सर्वे अत्र तिष्ठन्ति, तो मनुष्यः कस्मात् जातव्यम् अवश्यमेव। अर्थात मनुष्यः अस्य शब्दस्य आकृति विशेषे कथम व्यवहारो भवति इति कः अस्ति अस्य वक्ता, उच्यताम्। अस्ति कश्चित् वक्ता, मनुष्यः इसम नास्ति अत्र संदेह। पुनरपि मनुष्य कस्मात् यदि इदानीं पर्यन्तम् अपि न जातवन्तः, तो पुनः संदेह तो वर्तते कि मनुष्यः सन्ति न वा। मनोर अपत्यम् मनुष्य इति एतम सामान्यम निर्वचनम्, सर्वे मनुष्य सन्ति। महर्षि दयानंद महाभागई तत्र सत्यार्थ प्रकाशे स्वमंतव अमंतव प्रकाशे किम लिखितम अस्ति कश्चित् बुद्धौ, मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति येते मनुष्य। अत्र आगच्छति अग्रे मत्वा, मत्वा नाम मन जाने जात्वा, अर्थात किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम, कथम कार्याणि कर्तव्यानि, केन हेतुना च इदं ध्यानेन, कथम कार्याणि कर्तव्यानि केन च हेतुना, केन हेतुना कार्याणि कर्तव्यानि। भोजनम कर्तव्यम अवश्यमेव, बुभुक्षा बाधते, किंतु केन हेतुना भोजनम कर्तव्यम यदि भवन्तः विचारयन्ति तो मनुष्य, अन्यथा मनुष्यस्य विपरीत किं भवति, पशव इति। यदि वदनात् पूर्वं विचारयन्ति कि किं वक्तव्यम् इति, यदि तदेव वदति तरी मनुष्य, अन्यथा पशव। यदि अस्माकं जन्म केन हेतुना वर्तते, अस्माकं जन्म केन हेतुना वर्तते, वयं मनुष्याः स्मः, तो केन हेतुना अस्माकं मनुष्याणाम् उत्पत्तिः ईश्वरेण कृतम् इति अभूच्य। यदि वयं जानीमः तर्हि वयं मनुष्याः, न जानीमः तर्हि पशवः, साक्षात् वर्तते। तो अस्माकं जन्म केन हेतुना भूत, जयदेव महोदय, यदि भवान् मनुष्य रूपेण तिष्ठति अत्र तो जातव्यमेव। अस्तु, कथम जायते, अष्टानाम वस्तुनाम प्राप्त्यर्थमेव अस्माकं जन्म इति।
हम्म,
तो केन जात कथम जातम कथम जातम की अष्टानाम वस्तु नाम प्राप्ति अर्थमेव भवताम जन्मे मनुष्य नाम जन्मे वर्तते केन हेतु न जातम केन शब्द प्रमाणी केन जातम शब्द प्रमाणम कस्य वेदस्य अस्य संसारस्य निर्माणम अस्माकं च केन कृतम ईश्वरेण ईश्वरस्य वाणी किं वर्तते वेदवाणी वर्तते तो तस्यामे वेदवाणो ईश्वरेण किमुक्तं वेदवाण्यां अस्माकं जन्म अनेन हेतु न यदि भवन्तः जानन्ति और यदि अस्माकं जन्म अनेन हेतु न वर्तते इति चेत तो तम हेतुं पूर्णाय पूर्त्यर्थम तम हेतुं पूर्त्यर्थम का विधि केचे उपाय चंद्रगुप्त महोदय के उपाय कहच विधि वार्तयम वर्तते अस्माकं जन्म अष्टानां वस्तुनां प्राप्त्यर्थम अभूत इनि अनेन महोदयेन उक्तम् किन्तु एतत् तु निश्चितं कि तदर्थमेव अस्माकं जन्म किन्तु अष्टानां वस्तुनां प्राप्त्यर्थं के उपायाः सन्ति किं किं तत्र कर्तव्यं कुत्र प्रतिपादितं कुत्र यथा अनेन तु न जायते लक्ष्यं लक्ष्यस्य पूर्ति करोति अतः दुरिता तो अपगमिष्यति किन्तु अष्टानां वस्तूनां प्राप्ति कथं भविष्यति उपायः दुरिता तो गच्छन्ति किन्तु जानन्ति न कस्मिन् ऋतौ किं भोजनं कर्तव्यं तो आयु कथं वर्धते विनाशम् आप्नोति च शास्त्रेषु कथं भवति का विधि कः विधि मंत्रे पूर्वमे प्रतिपादितं स्तुता मया वरदा वेदमाता यदा वेदमाता वरदा वेदमाता मया स्तुता न तो अन्येन मया यदा स्तुता तो प्रचोदयन्तां प्रेरयन्तां पावमानि द्विजानां तदेव प्राप्तिर्भवति अर्थात वेदाध्ययनानन्तरमेव अष्टानां वस्तूनां प्राप्ति भवितुम् अर्हति तो मनुष्य वयं स्म मनुष्य केन हेतुना इदानीम् उच्यते तो यदि वयं मनुष्य इसमें तो तदर्थमेव कार्याणि कर्तव्यानि अर्थात येन हेतुना अस्माकं जन्म तदेव अस्माकं शरीरे मनुष्यता तिष्ठति अन्यथा किं भवति पशुता तो आगच्छति यदि देवा न आगच्छेयु के आगच्छन्ति साक्षात् वर्तते अस्तु तर्हि अथ तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः मनुष्य नामानि उत्तराणि पञ्चविंशति पञ्चविंशति षड्विंशति निघण्टौ तु प्रतिपादितम् मनुष्यः कस्मात् मनुष्यः कस्मात् अर्थात् मनुष्य अस्य शब्दस्य केन हेतुना आकृतिमन्ते प्रवृत्तिर्भवति अर्थात् अस्य शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं किम् उच्यते मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति मत्वा जात्वा विचार्य कर्माणि कार्याणि सीव्यन्ति सीवतन्तु संताने विस्तारयन्ति अर्थात जात्वा एव कि इदानीं का अपेक्षा वर्तते केन हेतुना कार्याणि कर्तव्यानि एवं विचार्य एव कार्याणि करोति अन्यथा किं भवति ओहो एषः चंद्रगुप्त महोदय सम्यक् न वर्तते केनापि उक्तं केनापि अस्य मित्रेण तत्र चंद्रगुप्त महोदयस्य पार्श्वे गत्वा कि एवं वदति तो विचारः किं स्यात् तत्र कि यः वदति तस्य पार्श्वे चर्चा स्यात् अन्यथा किं भवति मम विचारे भवान् मम विषये एवं वदति एवमेवं कृत्वा पुनः किं भवति युद्धं भवति तो यदि मनुष्य वर्तते किं स्यात् संस्कृतभाषायाम् अबुध्यते न वा विक्रमोदय तो कथं कार्यं चलिष्यति यदि इदानीमपि हिन्दीभाषा अग्रे श्रोतसूत्रे अपि हिन्दीभाषा वेदे अपि हिन्दीभाषा तो पुनः संस्कृत तं कुत्र गमिष्यति यदि वेदवाणी न जानती तो कथम कार्यम चलिष्यति, तो सुनो फिर नहीं आता तो हमारा समझाने का प्रयोजन है, वैसे हिंदी की इच्छा नहीं होती अंदर से। तो उसमें ये मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं, ये विषय चल रहा है, इतना तो समझ में आया होगा ना। हाँ समझ तो रहे हैं ना। तो मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं कि एक पहला हेतु दिया, मत्वा कर्माणि सीवयन्ति, जो विचार करके सीवु तंतु संताने, मतलब कार्यों को लगातार विस्तार करता है, पहले विचार कर लेता है। जैसे आज विचार कैसे करना चाहिए कि भाई सारा संसार अज्ञानी है, इसमें कोई संदेह नहीं, हम कभी सारे संसार के गुरु थे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, सारे संसार में संस्कृत भाषा थी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, हमारे पास तकनीक भी थी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो अब हमें क्या विचारना चाहिए कि ये गया कैसे, सारा कुछ नष्ट कैसे हो गया, इतने संप्रदाय कैसे बन गए, जो पहले हमारे ही आर्य थे आज वो हमारा शत्रु हैं, हमें मारना चाह रहे हैं, तो ऐसा क्यों है, आपस में झगड़े क्यों हैं। तो ऐसा विचार करना चाहिए, अगर हम ऐसा विचार नहीं करते फिर विचार के बाद में निश्चय होगा कि हम दोबारा कैसे बन सकते हैं, उसकी विधि क्या है। तो ऋषियों ने वेद में और वेद में जो प्रतिपादन किया या जिसकी आज संसार को अपेक्षा है, आज संसार को क्या तकनीक की अपेक्षा है, नहीं है, तकनीक पहले से वो चल रही है। आज वैज्ञानिक को किसकी अपेक्षा है, डॉक्टर को किसकी अपेक्षा है, इंजीनियर को किसकी अपेक्षा है, अध्यापक को किसकी अपेक्षा है, बच्चे से लेके और बूढ़े तक को आज किसकी अपेक्षा है, क्या उसको आधुनिक शिक्षा प्रणाली पूरा कर सकती है, नहीं कर सकती। तो ऐसा विचार किया, निश्चय हो गया तो फिर ये सारा पढ़ना वो कौन कर सकता है, ये भी निश्चय होगा कि ऋषियों ने ही पहले कभी सारे संसार में शांति फैलाई थी, विश्व गुरु हम वेद के कारण थे, और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, आठ चीजों की प्राप्ति, वेद ने कहा, ये निश्चय हमने कर लिया तो प्राप्त कैसे होगा, मंत्र ने पहले बताया, स्तुता मया वरदा, जब हम वेदों का अध्ययन करके इनके तत्वों को जान लेंगे तभी सारा कुछ होगा, विश्वानी दुरितानी भी तभी दूर होंगे। अब दुरित ही नहीं पता है, परमाणु का तो पता नहीं, परमेश्वर का पता कहां से होगा, शरीर किस सिद्धांत पे काम करता है, मन किस सिद्धांत पे काम करता है, प्राण किस सिद्धांत पे काम करता है, ये तो हमें पता ही नहीं है, तो उसको रोकेंगे कैसे। तो ये सारी चीजों को जान के ही कार्य हो सकता, अब निश्चय हो गया, अब विचार करके कार्य करना चाहिए। एक व्यक्ति चाहता है कि मैं सेवा कर लूं यानी नौकरी कर लूं, तो क्या आज नौकरी की अपेक्षा है, सीधी बात है, मतलब विचार करके कार्य करने, तो क्या आज नौकरी की अपेक्षा है, नहीं। आज हजारों नौकर पैदा, 35 करोड़ नौकर भारत में है, कितने विश्व में, तो नौकरी नौकर तो हैं, नहीं है। तो आज क्या जनसंख्या बढ़ाने की अपेक्षा है, पहले से इतनी बढ़ी हुई है है ना, पहले से इतनी बढ़ी हुई है, कम करने सोच रही है सरकार भी। तो आज जो अच्छे लोग हैं उनके लिए है, जो आगे जीवन लगाना चाहते हैं, तो उनको ब्रह्मचर्य का पालन करके, चारों वेदों का अध्ययन करके, ऋषित्व को प्राप्त करके इस दुनिया को मार्गदर्शन करना चाहिए। आज इसकी अपेक्षा है, नहीं हो तो बताइए, और वो कैसे बन सकते हैं, वो बिना वेद पढ़े बन नहीं सकते। तो ये मैंने उपलक्षण बताया, हर जगह विचार लेना चाहिए। एक व्यक्ति ने झगड़ा किया किसी के बारे में, कुछ चर्चा की, ये जो बताया था उसने कहा कि भाई ये व्यक्ति अच्छा नहीं, आपके बारे में ऐसा ऐसा कहता था। अब जो चंद्रगुप्त जी के बारे में किसी ने ऐसा कहा, तो ये क्या इनको क्या विचार करना चाहिए, मत्वा कर्माणि सीवयन्ति, कि उस व्यक्ति से बात करना चाहिए, तीसरे ने जो बताया ना उसका कभी भी विश्वास, उससे बात करनी चाहिए कि मेरे बारे में, अगर उसने सत्य कहा है कि भी चंद्रगुप्त जी ऐसे हैं, चंद्रगुप्त जो छोड़ दो मैं ही घटा लेता हूँ अपने ऊपर, उनको ऐसा लग रहा हो है ना, मैं ही घटा लेता हूँ अपने ऊपर कि भाई सनत कुमार जी ठीक व्यक्ति नहीं है, किसी ने कहा, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए, जिसने कहा अगर वो बात सत्य है पहले उससे मिलना चाहिए, अगर उसने कहा कि भाई मैंने ऐसा कहा है, अगर वो बात सत्य है तो सत्य को ग्रहण करने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, तो अपने दोष को दूर करना चाहिए, क्योंकि भाष्यकार ने क्या कहा है, दृष्टस्य ही दोषस्य सुसुखेन परिहार है, जो दोष स्वीकार कर लिया गया है उसको अच्छी प्रकार हटाया, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या दोष है, दूसरे सामान्य रूप से पता होता है, किंतु मेरे व्यवहार से दूसरों को क्या कष्ट हो रहा है, वो मेरे से क्या अपेक्षा रख रहे हैं, उनको बताना चाहिए। तो उसमें बात वहीं पूरी हो गई कि भाई ठीक है, आपका धन्यवाद करना चाहिए कि आपने कर मुझे सीधे ही बता देते आप, तो और ज्यादा अच्छा था, ये कहना चाहिए कि तीसरा व्यक्ति क्या मिला के बोले। और यदि ऐसा नहीं है आपके अंदर, उसने कहा, तो उसको बात चर्चा करनी चाहिए कि भाई आपने किस हेतु से ऐसा कहा। फिर भी वो व्यक्ति नहीं मानता तो कैसे विचार करना चाहिए कि शब्द कहाँ रहता है? आकाश देश है, शब्द ही तो कहे थे ना, वो कहाँ चला गया? अपने पास है ही नहीं। ये है जीवन जीने का विज्ञान, यही कह रहे हैं मत्वाकर्माणी। आज झगड़े संसार में अधिकतर सभाओं में हो रहे हैं, जहां भी हो रहे हैं, वो किस कारण से हो रहे हैं? इस कारण से हो रहे कि लगाने वाले बीच में हैं और उन्हीं की मानी जाती है। व्यक्ति को न्यायाधीश का कार्य करना चाहिए, वकील का कार्य, और होता क्या काम है? वो वकील ने आके बता दिया कि व्यक्ति ऐसा है, और वकील की बात मान के क्या हुआ? दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, ये है तरीका। और आगे चलते हैं, मनस्यमानेन सृष्टा ध्यानेन, मनस्यमानेन सृष्टा, मनस्यमान नाम मन अवबोध, मनु अवबोधने और मन जाने, दोनों धातुओं से मनस शब्द बनता है। तो अबुद्धिमानेन और जाननेव सृष्टा, आपको प्रजापति ने बहुत विचार करके बनाया, ध्यान देने की। मनस्यमानेन सृष्टा केन, प्रजापति न केन, ईश्वरेण, ईश्वर की आप अंतिम कृति हैं, ये ध्यान देने की बात है। सब कुछ पहले बन चुका था, पशु भी, पक्षी भी, नदी भी, तालाब भी, आप उसकी अंतिम कृति हैं। तो आप सामान्य नहीं हैं, आप इस सूर्य से भी बड़ी ताकत आपके अंदर है, चंद्रमा से भी बड़ी ताकत आपके अंदर है, ये सारे समुद्र आपके अंदर रहते हैं, तो आप कितनी बड़ी ताकत होगी कि सारे आपके अंदर रह रहे हैं, है ना? तो फिर आप सामान्य जीवन क्यों जीना चाहते हैं? सीधी बात है कि परमात्मा की आप सर्वश्रेष्ठ कृति हैं, और आप छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों में, क्रोध में, ईर्ष्या में, द्वेष में, छोटे मोटे लक्ष्यों में, ये भी तो छोटे मोटे लक्ष्य है ना, कि ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, कोई प्रोफेसर बनने की सोच रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्यों आप अपना सामान्य जीवन जीना चाह रहे हैं? तो एक जीवन तो वेद के लिए लगा दीजिए, है ना, जिसके लिए आपका इस दुनिया में आए हैं, ठीक है ना जी। आगे चलो, मनस्यति पुनर्मनस्वी भावे, और मनस्यति धातु क्या है? मनस्वी भाव में है, और मन अस्य स्थिति, ध्यान देने की बात है, ज्ञान अवबोधन तत्व ज्ञान जिसको है वो कौन है? मनस्वी है। तो आप सामान्य नहीं है, अपने आप को सामान्य मानना छोड़ दीजिए। और सामान्य अर्थ क्या है वो अंत में बता रहे हैं, मनोरेपत्यम मनुष्योवा, मनोर सूत्र बोलिए पूरा, मनोर जाता है तो सुख, तो वो क्या हो गया? मनुष्य हो गया, कि मनु की जो संतान है, वो है ना, गीत भी गाते हैं आर्य समाज में, मनु की संतान तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो आप सामान्य नहीं हो, आर्य वीर दल का गीत है ना। मनु जो है हमारे सबसे पहले राजा जो हुए ना इस राष्ट्र के, मतलब प्रजाओं के, राष्ट्र तो एक ही था उस काल में, तो दूसरे राष्ट्र थे ही नहीं, वही मान लीजिए। और आदि सृष्टि में ये आता है कि जब तिब्बत के अंदर जो एक व्यवस्था की गई ना, मनुष्य की प्रति, तिब्बत भारत का हिस्सा था, तो जो सबसे पहले राजा हुआ है, ऋषि, राज ऋषि जिसको बोलते हैं, मनु जी हुए हैं। उन्होंने शुरू में तो संविधान आदि कुछ नहीं था ना, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो पढ़ाना पड़ा ना ऋषियों को सबको बाद में, तो एक व्यवस्था बनाई मनु जी ने, तो वो उसी ने जो नियम चलाए वेद के अनुसार, तो हमारे सबसे पहले पिता हैं, पाति रक्षति इति पिता, जनयति तो नहीं है। और क्योंकि बाद में जब खंड प्रलय होती है, 14 मनवंतर है, तो 14 खंड प्रलय होती हैं, तो उसमें जो हमारा पिता होता है, हमारा पालन करने वाला होता है, वो मनु ही होता है, तो उसके कारण ये मनु की संतान है हम। और आइए, नहीं चलता तो वेद से रहा ना, एक संविधान तो लोगों को वेद का समझाया ना, वेद में क्या लिखा है, सामान्य जनता तो वेद नहीं पढ़ी थी ना, बिल्कुल था, तो उसकी वेद का अर्थ भी तो बताना पड़ेगा ना। वो तो बाद में चली है, वर्षों बाद चली है, किंतु वेद की जो व्याख्या है वही तो मनुस्मृति है ना। अब अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधात्मम, ये अग्नि पुरोहित कैसे, ये तो समझाना पड़ेगा ना, ऋतु कैसे, नहीं तो ऐसा वेद पाठी जैसे अब दक्षिण भारत में ऐसे हो जाएंगे अगर ऋषि लोग इसकी व्याख्या नहीं करेंगे तो। व्याख्या तो की है ना, नहीं मनुस्मृति साथ में नहीं, वो तो वर्षों बाद है, किंतु व्याख्या की गई है ना, वही व्याख्या बाद में संविधान के रूप में आ गई है। पहले तो व्याख्या की वेद का ये मंत्र है और इसके अनुसार ऐसे जियो, लिखित था ही नहीं कुछ, ना लिपि थी ना लिखित था, किंतु वर्षों बाद जब बुद्धि का स्तर कम हुआ, जो जिसने बनाई उसका नाम मनु हुआ। और आगे चलते हैं, मनुष्य बहुवचन में ही है ना, एक वचन में इसलिए दिया कि मनुष्य तो एक जाति, हर जाति में एक वचन भी होते हैं, बहुवचन भी होते हैं, और वेद से क्योंकि ये शब्द लिया है तो वेद में जहां मिलता है वहां मनुष्य बहुवचन ही है। और अधिक को कहना है ना, तो अधिक को कहने में तो बहुवचन हो गए ही, ये भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूं, तो मनुष्य हम सब क्यों है ये पूछ रहे हैं। तत्र पंच जना इत्येतस्य निगमा भवन्ति, तो पंच जना इत्येतस्य निगमा भवन्ति, निगमा नाम है अर्थस्य बोध का, भवन्ति अर्थात इसी का मंत्र दे रहे हैं। तद अद्य वाच प्रथमं मनसीय ये नसुरान अभि देवा असाम ऊर्जाद उत यज्ञास पंच जना मम होत्रम जुषध्वम। मंत्रस्य अर्थ विशिष्ट रूपेण वर्तते, तद अद्य 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 नाम है अस्मिन् द्यवि, आज के दिन वाच वाणी के प्रथमम श्रेष्ठतमम मनसीय मन्ने जाने। तो क्या है वाणी का षष्ठी संबंध है, तो वो क्या है वो नहीं बताया हुआ है, तो वाच सामर्थ्यम, एक ध्यान देने की बात है, जहां षष्ठी विभक्ति और कुछ चीज उसके बारे में ना बताइए तो सामर्थ लेना चाहिए, उस वस्तु के सामर्थ को लिया जाता है क्योंकि उसका भाव को लिया जाता है फिर। तो अद्य अस्मिन् द्यवि वाच वाण्या सामर्थ्यम प्रथमम श्रेष्ठतमम मनसीय मन्ने जाने, केन हेतु ना जाने, येन असुरान येन सामर्थ्येन वयम देवा असुरान अभी असाम अभी भवे में, अर्थात तेसाम उपरी विजय प्राप्नु में, कथा कदा विजय प्राप्नुवन्ति जना देवाश्च असुरान उपरी ऊर्जाद उत उत यज्ञास ऊर्जा मत्तीति ऊर्जाद संबोधन हे ऊर्जाद यज्ञास तस्य विशेषण वर्तते, कथम जायते यज्ञास विशेषण वर्तते ऊर्जादे इत्यस्य। अनेक दतो मैं उक्तम आ केन सूत्रेण कथम भवति, सम्यक अस्ति। तो हे ऊर्जाद यज्ञास, यज्ञास नाम है यज्ञ योग्य, ऊर्जा इति अन्य नाम सुपटितम और बल नाम सुच पटितम, तो ऊर्जा मत्ती ऊर्जाद, और यज्ञा से यज्ञ यज्ञा रहा यज्ञ संपाद का यज्ञ ऋतु विभाम किम वर्तते घा खय, हाँ तो यज्ञ भवती। पंच जना तो ये ऊर्जाद और यज्ञा से किम भवंती देवा यजमानाश्च, ते और पंच जना मनुष्य मम होत्रम जुषध्वम, मम होत्रम यदा जुषध्वम तदय किम भवति असुरान अभि भवेम। तो यदि मेरे को आप होत्र को जो यज्ञ को है इसको आप जुषध्वम जुषप्रीति सेवन सेवध्वम इसका आप सेवन करेंगे तो क्या होगा असुरान अभि भवेम, तो आप असुरों को मार पाओगे ये बता रहे हैं। अर्थात जो यज्ञ को खाने वाले देवताओं और हो मनुष्यों यदि आप मेरे होत्र का सेवन करेंगे, मेरी होत्र का मतलब हुयते अनेनेति होत्रम, अर्थात वेद वाणी को परमात्मा आदेश कर रहा है हे देवताओं हे मनुष्यों यदि आप मेरे होत्र को सेवन करोगे उसका पालन करोगे तो असुरान अभिभव मौसी के द्वारा आप असुरों को मार पाओगे। काम करो दीर्षा मद लोभ और जो दुष्ट लोग हैं आतंकवादी हैं देशद्रोही हैं और भी जितने भी पापी हैं ये सब इसी में आते हैं असुरों में। अब इनकी व्याख्या देखिए, तद अद्य वाच परमम मनसीय पर प्रथमम नाम है परमम श्रेष्ठम मनसीय मन्ने जाने ये नसुरान अभिभवे में देवा, जिसके कारण देवता लोग असुरों को मारते हैं उसको हम जाने यदि जाने नहीं तो मानेंगे कैसे, और मानेंगे नहीं तो मारेंगे कैसे असुरों को, तो उसको जानो। वेदवाणी में तो सामर्थ्य सामर्थ्य है, तत्व जान, वाच नाम है वेदवाणी। असुरा असुरता, असुरा कस्मात असुरता, असु प्राणेशु रता असुरता, जो प्राणों में ही रत है, खाने पीने में क्या है वो, आचार्य ज्ञानेश्वर जी सुनाते हैं ना शब्द को, भुंगस्व रमस्व ईट ईट ड्रिंक एंजॉय, हाँ तो ऐसा कुछ शब्द है, हाँ खाओ पियो मौज करो हिंदी में, तो जो ऐसे में ही लगे हुए हैं ना, जिनको आत्मा से कोई मतलब है ना, देश से मतलब है ना, किसी संस्कृति से है ना, वेद से है आदि आदि, ऐसे जो आधार्मिक लोग हैं वो क्या है, असुर हैं। स्थानेशु, और ये साथ में कहाँ जुड़ा हुआ है, स्थानेशु असुरता, आप अपने स्थान में जो रत हैं उनका अपना स्थान भी है असुरों का, मतलब यहां तो रहते ही हैं किंतु उनका कोई जगह भी थी उस काल में कि उनका ये इलाका उनका है, ऐसे भी कह रहे हैं है? तो आज जो है 7 अरब में तो 7.5 अरब में तो 7.25 अरब तो असुरों में ही आएंगे, आप लोग सामान्य नहीं हो, अगर 7 अरब में गणना हो जाए ना 7.5 अरब में तो हजारवा नंबर तो आ ही जाएगा, तो इसलिए अपने आप को सामान्य में समझो। और आगे चलो, स्थानेभ्य इतिवा, और स्थानेभ्य स्था, और इस कौन स्थानों से फेंका हुआ है, कैसे फेंका हुआ है, जब असुर लोग यहाँ पैदा हो गए भारत में तो इनको यहाँ से पहले मारते नहीं थे, आज भी तड़ी पार कर देते हैं ना जो पुलिस वाले, तो इनको क्या किया, इनको एक नौका में बैठा दिया, खाने पीने का सामान रख दिया कि या तो समुद्र आपकी भेंट ले लेगा, नहीं तो कोई स्थान ढूंढ लो, पृथ्वी पे बहुत स्थान है वहां रहो जाके। तो इसलिए आज भी विदेशी लोग आर्यों से क्यों चिढ़ते हैं, वो परंपरा से सिखा के आते हैं कि आर्यों ने हमें निकाला हुआ तो उनसे बदला लेना, ये पक्की बात है। हाँ तो इनको फेंका हुआ नौका में बैठा देते तो ऐसा आता है, ये जितने भी फिर वो इन्होंने संस्कृत भाषा क्यों रही, क्यों इनकी भाषा संस्कृत थी, अब इनको अपने आप को अलग करना था तो इन्होंने ये सारी भाषाएं बनाई फिर बोली आदि, कि इन आर्यों से बोली भी अलग करो, जैसे जब जो आर्यों से मलेच्छ बने तो ये कटाओ है ना और इसको रखो, हमारे से थोड़ा उल्टा किया ना, हम पूर्वाभिमुखी हैं वो पश्चिमाभिमुखी, तो कुछ उल्टा तो करना ही था, तो ये आचरणहीन थे तो शास्त्रों को पढ़े हुए, जब आचरणहीन हो गया तो असुर हो गया, असुर हो गया तो देवताओं के बीच में कैसे रहेगा, आर्य तो देवता है तो उनको दूर भेजो, मारो भी मत क्योंकि इतने पाप भी नहीं कि मारने योग्य हैं, कि कहीं जंगल उंगल में रहेंगे या तो शेर वेल बलि ले लगा, या बचेंगे तो कुछ सुधर जाएंगे, पर वो सुधर न करके और हमारे विपरीत बन गए, तो ऐसा हुआ। तो उसी को आगे कह रहे हैं, अस्थानेषु अस्था, वो स्थानों से फेंके हुए थे, आर्य स्थान से, आर्य निवास से दूसरे दीप दीपांतरों में जंगलों में इनको भेज दिया गया था। अपि वा असु इति प्राण नाम है, असु क्या है, प्राण का नाम है। अस्त शरीरे भवति, शरीर में ठहरे होते हैं प्राण, तेन तद्वंत, इसलिए उस वाले हैं वो, क्योंकि वो प्राण की पूजा करते हैं, शरीर को बलिष्ठ बनाओ, राक्षस लोग बहुत बलवान थे, एक तो ऐसा राक्षस का वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, कबंध, कबंध नाम का ऐसा राक्षस है कि वो राम और लक्ष्मण ने खूब मारा, मरा नहीं, तो फिर उसने अपना उपाय बताया कि देखो भाई मेरे हाथ पैर तो आपने काट दिए, प्राण नहीं निकल रहे क्योंकि मैंने प्राणों की खूब सेवा की है, तो इसका उपाय क्या है कि मेरे को गड्ढा खोद के दबा दो, जब सांस ही नहीं आएगा बाहर से तो प्राण अपने आप समाप्त हो जाएंगे, तो उसको गड्ढा खोद के दबाया तो तब मरा, फिर निकाल के उसका दाह संस्कार किया, इतना बलवान था क्योंकि उसी में लगे रहे वो। और ये भी आता है कि राम और कृष्ण को नहीं, लक्ष्मण को कंधे में दबा, नहीं लक्ष्मण को, राम को नहीं, कंधे में दबा के भग लिया था वो, इतना बलवान था। अब वहां चले जाओ ना दक्षिण अफ्रीका, वो प्राणों में ही लगे हुए 6.5-6 फुट और पूरे तकड़े, कंधे में दबा के भग जाएंगे हमें तो। और आगे चलो, सो देवान सृजत है, सह अब ध्यान है, इदानीम देवानाम उत्पत्तिर कथम अभूत मनुष्य और असुराणाम च, स प्रजापति देवान सृजत है तत्सुराणाम सुरत्वम, तो वह देवताओं का क्या है, सुरत्व है, और वह सुकर्त यहाँ सु से भी सो बना है। सुकर्त प्रशस्त नाम है, मतलब प्रजापति ने अच्छे पदार्थ से बनाया है इसलिए वो देवता बन गए, और नीचे के हिस्से से बनाया इसलिए असुर बन गए, ये बता रहे हैं। असो असुराणाम असुर जाता है, असो जो नैसु असु, तो जो श्रेष्ठ पदार्थ नहीं थे उनसे प्रजापति ने असुरों को बनाया इसलिए असुर हो गए। इति विज्ञायते, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ का विज्ञान है। उनके काम ही ऐसे थे तो अच्छे से कैसे बना देते उनको। शुरू में क्या, ये आदि सृष्टि का कब अंत मानोगे आप? कमाल है, ये प्रजापति ये ईश्वर ने बनाया कि सत्वरजस्तम ईश्वर ने बनाए, तो वो तो नित्य है, पहले से है, कब से है ये नहीं कहा जा सकता। अब वो तो शक्ति है, रजस्तम का मेल होगा, उसी से जो पदार्थ बनेगा उसमें तो असुरता आएगी, तो वो तो है ही, वो बना नहीं थे। अगर सारे ही काम अच्छे बना देते तो इस संसार को छोड़ने की इच्छा नहीं होती, अब असुरों से डर के छोड़ोगे है ना भाई, मोक्ष में कैसे जाते आप? और सबके काम तो एक से हो नहीं सकते, तो असुरों को तो उसी से बनाएंगे ना।
असुर मोक्ष में साधक है।
अब ये मच्छर वच्छर नहीं बनाते आपको, और वो सारे कुछ कहीं आप कोई कष्ट ही नहीं होता आपको, तो क्या मोक्ष में जाने की इच्छा होती? तो थोड़ा मच्छर खाएंगे, मलेरिया होगा, रोग आएंगे, आतंकवादी होंगे, उनसे डर के छोटो या बहुत दुखी हो लिया, अब तो अगला जन्म ही नहीं लेना।
डरपोक लोग मोक्ष जाते
हैं क्या?
डरपोक लोग जाते हैं।
डरपोक लोग नहीं, जिनको तत्व ज्ञान हो गया।
आप बोल रहे हैं डरोगे तो मोक्ष
में। बिल्कुल, तभी तो वैराग्य हो गया, नहीं वैराग्य होगा कैसे आपको?
डर से वैराग्य होता
है, डर भी एक वैराग्य का कारण है, और तत्व ज्ञान उसमें आगे कारण हो जाता है। असली वैराग्य तो तत्व ज्ञान से होगा, पर दुख भी वैराग्य का। अब महर्षि दयानंद जी की बहन नहीं मरती और चाचा जी नहीं मरते, तो हो सकता है इतनी जल्दी ना होता। संस्कार तभी जगता है जब कोई घटना होती है, आसानी से तो उनका जगता है जो भाव भाव प्रत्यय वाले हैं। आपका और हमारा तो घटना से ही जगेगा, और आप घटना ये है कि अभी तत्व ज्ञान कर लो, घटना हो ही ना
घटना जल्दी हो जाएगी।
और आगे देखो, ऊर्जा ये ऊर्जा को खाने वाले यज्ञ के योग्य हैं, अन्नादाश्च यज्ञाश्च, जो अन्न को खाने वाले देवता है। ऊर्गिति अन्न नामो जयतीति सतः, ऊर्जयतीति सतः, जो शरीर में बल देता, अन्न ना हो तो बन कैसे मिलेगा? असली अन्न तो देवता खाते हैं, पर आजकल हम देवताओं को अपने हिसाब से दे देते हैं, असली अन्न तो उनका है। वैसे मनुष्य भी हैं जो देवताओं का भोजन कर रहे हैं, यज्ञ शेष खाने का विधान है, तो रोटी की तो हम आहुति देते नहीं है, तो हम ऊर्जा दे नहीं है। वो घट जाएगा, पर ऊर्जा कहाँ मिल रही, ऊर्जा तो नष्ट हो रही है भोजन को खा के। चलो वो अन्नादे को एक वो घटा लो आप, वैसे तो इसमें आ ही गया था वो मनुष्य तो। पक्वम सु प्रविक्रणम इति वा, दो अर्थ के पक्वम, और दूसरा मंत्र में तो नहीं था ये अर्थ, कहां से निकाल लिया?
पक्व शब्द से उर्ज बना, पक्व शब्द से उर्ज शब्द बना,
वही तो कह रहे हैं, तो इसमें नहीं था, इसका अर्थ कर रहे हैं ऊर्ज का अर्थ कर रहे हैं। पक्वम वो पका हुआ होता है, पक्वम नाम है डुपचस पाके, तो वो पका हुआ होता है इसलिए वो अन्न है। और सुप्रविक्रणम इति वा, और वो ओवृश्चु छेदने, उसको काटा जाता है खूब, जब गेहूं काटेंगे, धान्य काटेंगे, और जो खाएंगे दांतों से वो भी तो काटना है, इसलिए इसको ऊर्ज कहते हैं। अर्थात अच्छी प्रकार चबा के खाओगे तो ये बल मिलेगा, और पका हुआ खाओगे तो बल मिलेगा, कच्चा खाओगे तो बल नष्ट। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पको का अर्थ ये है कि आम कच्चा खाओगे तो बीमार हो जाओगे, पका हुआ खाओगे तो बल आएगा, ऐसी सारी चीजें। पके हुए में रस आ जाते हैं सारे, ये ध्यान देने की बात है, इस भोजन इस पके हुए भोजन की बात नहीं, अग्नि में तपाई इसके तो रस नष्ट हो जाते हैं। जो
चावल पका के खाते हैं तो उसके रस में
कुछ बढ़ भी जाते हैं, कुछ नष्ट भी हो जाते हैं। तो पंच जनाम होत्रम जुसद्वम, पांच मनुष्य मेरे होत्र का सेवन करें। ये पांच कौन कौन से हैं?
राक्षस,
गंधर्वा पहला है, पितर दूसरा है, देवा तीसरा है, असुरा चौथा है, रक्षास रक्षांसी पांचवा है। तो ये पांच प्राण भी हैं। चत्वारो वर्णा निषादी पंचम इति उपमन्न, चार वर्ण हो गए कौन कौन से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और निषाद कौन है पांचवा। निषाद क्या होता है उसको भी यज्ञ का अधिकार है। यदि निषाद क्या था, जंगल में पशु पालता है, तो वो क्या है कि यदि यस्य पशुन रुद्र शमयेत, जिसके पशुओं को बिजली गिर जाए तो उसको भी हवन करने का विधान है, किंतु वो तीन प्रकार के कुंड में नहीं, सामान्य कुंड बनाएगा और उसमें करेगा अग्नि की शांति के लिए, वो निषाद है जंगल में रहने वाला। निषाद अकस्मात निसन्नम अस्मिन पाप कमिति न रुकता, इसमें पाप ठहरा हुआ है क्योंकि बाहर का है, थोड़ा उससे भी नीचे है। शूद्र तो सेवा वेवा करेगा, आर्यो में ही रहेगा, ये थोड़ा जंगल में रहता है, पशु वशु को मारता है, पक्षियों को मारता है, इसलिए पाप रहे। इन कबीले, कबीले जो होते हैं ना, कबीले निषाद के रूप में ही आज कबीले हैं, समझो आदिवासी जो निषाद हैं वो निषादी होते हैं, वेद की भाषा में कबीलों में जो रहते हैं ना, उनका एक स्वामी भी होता है वहाँ, कात्यायन सरोवर सूत्र में निषादस्तपति, वही हवन करेगा, सारे निषाद नहीं करेंगे। यत उनका हवन सामान्य अग्निहोत्र जैसा ही होता है, वो रुद्र देवता के लिए चरु का निर्वाप करते हैं, हाँ निवारस चरु, नहीं ये सामान्य चावल नहीं होते हैं, निवार होते हैं जंगली धान्य, वो जंगल में ही रहता है तो जंगली धान्य को निवार बोलते हैं, तो उसका चावल को उबालेगा और उसकी आहुति देगा, मंत्र तो बोलेगा
जर जी, मंत्र खुद बोलते हैं,
पुरोहित को बुलाएगा या इतना तो गडरिये भी गीत गाते थे वेद के, तो इतना तो आता ही होगा, मतलब वेद इतना फैला हुआ था, लोग कहते हैं ना वेद तो गडरियों का गीत है कि वो भेड़ चराते हुए भी सामगान करते थे, है ना, तो लोगों ने कहा कि वो तो
चराते हुए वेद मंत्र का पाठ करते थे।
हाँ कमाल है, एक वो आपने इतिहास नहीं पढ़ा कि एक व्यक्ति रघुवीर जी जो थे ना हमारे इतिहासकार बहुत अच्छे विद्वान आर्य समाज के, वो अफगानिस्तान में गए, अफगानिस्तान में गए तो इतिहास में लिखा हुआ है आर्य समाज के, कि उन्होंने देखा कि एक गडरिया जो है ना वो चरा रहा है और उससे वार्ता हुई संस्कृत में, और उसने गधों के ऊपर जो है ना पट्टियां लादी हुई है और पाणिनि के सूत्र लिखे हुए उन पट्टियों पे, कह रहे आप पाणिनि के देश से आए, मेरे को ये समझाओ सूत्र, तो पट्टियों पे सूत्र लिखे हुए थे, मतलब इतनी पट्टियां थी, क्योंकि वो उसको याद करता था उस पर लिखता था, याद करता था लिखता था मिटा देता, ऐसे भी ऐसे भी लोग थे, क्या क्या नहीं किया हमारे पूर्वजों ने आप समझ सकते हैं, विदेश में भी क्या होगा, सारे संसार का गुरु बनना कोई सामान्य कार्य नहीं। और आगे चलो, तो यत पांच जन्य विषाह पंच जनी नया विषाह, ये जब तक निर्वचन नहीं करेंगे ये पता नहीं लगेगा कहना क्या चाह रहे, पांच जन्य का निर्वचन करो, अरे उसका आरएसएस का एक संपादकीय भी है, पांच जन्य एक पत्रिका है, पांच जन्य अकस्मात बोलो, समार का अर्थ कैसे निकलेगा,
पांच जनों का समूह,
वो तो पांच जन हो गया, जन्या कैसे बना, जन्या शब्द है ना, तभी तो तृतीय में जन्या है बना, तो इसमें हाँ तो क्या प्रत्यय हुआ, कैसे मानेंगे, हाँ पंच जनात उपसंख्यानम कर्तव्यम, तो पंचसु जनेसु भव, ऐसा अर्थ होना चाहिए। और पंच जनिनिया कैसे, जनी नया कैसे बन गया, पंच जनी ने बनेगा उसका तृतीय में, जनी नया बन जाएगा, तो पंच क्योंकि ये विषा प्रजा का विशेषण है ना, इसलिए स्त्रीलिंग है, जनीना है, तो ये कैसे बनेगा पंच जनी ने, क्या प्रत्यय हुआ, खै प्रत्यय किससे हुआ, पंचभ्यो जनेभ्य हित, पांच मनुष्यों के लिए जो हितकारी है वो पंच जनीन है, तो क्या प्रत्यय हुआ है, ख प्रत्यय हो गया, तो पंच जनीन या विषा पांच मनुष्यों के लिए हितकारी जो है उसके द्वारा, उस प्रजा के द्वारा, और पंच मनुष्यों में होने वाली प्रजा के द्वारा, ये इसका अर्थ हो गया। पंच प्रिक्ता संख्या, पांच क्या है? मिली हुई संख्या, प्रीची संपर्क के पांच क्या है ना, मिली हुई संख्या को कहते हैं। किसमें मिली हुई? स्त्री पुंस नपुंसकेशु अविशिष्ट, पंच स्त्रीय, पंच पुरुष और पंच फलानी, तीन हो गए ना। स्त्री को भी कहा पांच ने, पंचा नहीं हुआ, तो वो मिली हुई संख्या मतलब नपुंसक में भी पंची रहेगा, पुल्लिंग में भी पंची रहेगा और स्त्रीलिंग में भी पंची रहेगा। पांच जनों में जो होने वाली प्रजा है उसके लिए कुछ कहा गया है मंत्र में, तो पंचजन्या प्रजा हे इंद्र आगच्छ, पांच जनों में जो होने वाली जो प्रजा है मतलब पांच होने वाली प्रजा है मतलब पांच प्रकार की प्रजाओं का जो समुदाय है उसके लिए ही हे इंद्र आगच्छ, उसकी रक्षा के लिए वो ऐसा मंत्र कहता है।
पंच वाले पहले भी
वो पंच अलग है या प्रजा का विशेषण है? बाहु नामानि उत्तराणि द्वादश, तो मनुष्य का नाम हो गया, बाहु के नाम चल रहे हैं। बाहु कस्मात्? बाहु को बाहु क्यों कहते हैं? प्रबाधते आभ्याम कर्माणि, आभ्याम बाहुभ्याम क्रमाणि प्रबाधते, प्रबाधते नाम है अन्येषां प्रबाधते और गमयति अस्मान। अब कोई डंडा लेके आ गया तो कौन रोकेगा सबसे पहले? तो वो क्रिया थी एक डंडा मारने की, उसको प्रबाधते अच्छी प्रकार से बाध लेता है। और गम्यति अस्माकम कर्माणि, दूसरा अर्थ क्या होगा? हमारे कर्मों को ये कराती है। अगर किसी व्यक्ति की भाव ना हो तो आधे कर्म तो उसके वैसे ही समाप्त हो गए, इसलिए इसको भाव कह रहे हैं। गम्यति आभ्याम कर्माणि बाधते वा परानीति। अंगुली अंगुली नामानि उत्तराणि द्वाविंशति, 22 जो है ना अंगुली के नाम है। अंगुल यह कस्मात्? क्योंकि ये बहुत ज्यादा होती हैं इसलिए बहुवचन दिया है। अग्रगामिन्यो भवन्ति, अंग्रेजी वाले नहीं बता सकते कि व्हाट इज फिंगर, फिंगर इज फिंगर। तो अंगुल यह कस्मात्? अग्रगामिन्यो भवन्ति, ये आगे जाने वाली होती है। कोई भी काम हो सबसे पहले अंगुली करती है, नहीं कोई चीज लेनी हो, पकड़ना हो, खाना हो, तो सबसे पहले कौन करेंगे? पुरोहित है, मनुष्य नाम पुरोहित है अंगुल्य, एक निर्वचन ऐसा भी हो सकता है। अगर गामिन्य के भवंती पुरोहिता, तस्मात पुरोहित सामान्यत अंगुलयापि पुरोहिता। और अगर गालिन्य भवंती, आगे आगे छिड़कने वाली होती है, कोई भी काम जल का हो आचमन करो तो सबसे पहले यही चलती है और गलती भी यही है वैसे। सबसे पहले पैरों की उंगली देखिए ना, बरसात में वही गलती है हाथ की उंगली, क्योंकि इन्हीं से काम ज्यादा लेते हैं। कोई ज्यादा सरफ परफ से लंबे काल तक कपड़े देते थे तो खाली भी उतर जाती है ना। और अग्र कारिण्य भवंती थी, सबसे पहले कार्य इन्हीं से होता है, कार्य को करने वाली आशीर्वाद भी देना हो तो उंगली नहीं तो आशीर्वाद कैसे देगा, है ना। सबसे पहले कार्य कराने वाली यही होती है। गामिनी तो जाने वाली है, और करने वाली है दान देना है, ये करना है, कुछ भी है वो तो रक्षा के लिए है। कराटे जो जानते हैं सबसे पहले जो है ना यही काम आते हैं, हाथ ही चलते हैं, मतलब हाथ मतलब उंगलियों का समुदाय वो ही चलते हैं। तो वो तो जान गमन प्राप्ति हो जाएगी और ये करने वाले हो जाएंगे, कुछ भी काम करना हो तो सबसे पहले उंगली से ही करते हैं। वो है ना दक्षिणा भी दाएं हाथ से देते हैं, पीछे आया था और हाथ में क्या, यदि हाथ ही यहां से कटा हुआ है तो कैसे रखेगा नोट वोट, तो उंगलियों में रख के अंजलि भी देते हैं, आशीर्वाद भी दे, सारा कुछ यही करने वाली है। हाँ हाथ की उंगलियां हिलती हैं, ये भी बात ठीक हो जाएगी।
संदेह होता है ना, उंगलियों देखते क्या है।
हाँ और हाथ से ही पकड़ के देखते हैं कि क्या है सबसे पहले, सारे मतलब उंगलियों के बिना कुछ नहीं। औषधि भी तोड़ेंगे तो चाखेंगे तो ऐसे पकड़ के करते हैं। और आगे चलो, अग्रसारिण्य भवंती थी, और अग्रसारी होती हैं, यही सरकती हैं पहले। अगर सरक के भी चलना हो तो पहले उंगली है, जिसका वजन ज्यादा हो जाता है तो उसको सर्पासन कराते हैं तो पहले उंगली चलती है। क्यों जी योगाचार्य जी, वो सांप की तरह चलते हैं ना। और अपिवा और अंकना भवंती थी, ये चिन्ह वाली होती है, इस पर चिन्ह भी दिख रहे हैं ना, चिन्ह भी इस पे हैं। और कहीं चिन्ह लगाना हो और अंगूठा लगाना हो तो ये होती हैं। अपि वा अभ्य अंचना देव सी, और ये पूजनीय भी होती है, पूजा भी इन्हीं के द्वारा होती है। तो उंगली के इतने निर्वचन है जो कोई भाषा वाला, बस फिंगर तो फिंगर है, और भिंडी को क्या बोल दिया उन नाम भी नहीं मिला तो ऐसा रख दिया
लेडी फिंगर, लेडी फिंगर।
और आगे है? हाँ, तो अभिमुख्य ना अंचनात, उस उन वो अंचन दिखाई देते ना अभिमुख्य से, उन्हीं की पूजा आदि होती है सबसे पहले, उसी के द्वारा की जाती है। अभिमुख्य ना, अभी का नाम है अभिमुख्य ना, अपीवा अभ्यंजन और अभ्यंजन, अभ्यंजन कहाँ है, एक ही तो है दोनों, तो अभ्यंजना में तो अलग अंतर हो गया है? अची अच क्या धातु है, अजी गत शेपण है, अंचु गति पूजन है, तो गति तो करती हैं पूजन के लिए भी करती हैं, विशिष्ट अर्थ हो गया ना। ये उंगलियां ही क्या होती हैं, कोई भी आप हवन करो तो आहुति किससे देते हैं, मेरे में तो एक ही दिया हुआ है, अपि वा अभ्यंजना देव सिंह, यहीं तक दिया मेरे में तो, आपने ओके
इससे पहले
अभिमुख्य ने, यहाँ अभी जोड़ दिया ना, अभिमुख्य न अंचना, मेरे में तो दिया अंकना भवंती इति वा, उसके बाद सीधा दे दिया अपि वा अभ्यंजना देव सिंह। अच्छा कहाँ है, हाँ मिल गया, अपि वा अभि अंजनादेश, तो इसी से वो अजी गति शेपण से बन जाएगा, फिर ये वो पूजा पूजी अर्थ में अंचना पूजनी अर्थ में हो जाएगा, और अजीगत उसे ये बनेगा फिर, तो अजीगत क्षेपण हो, तो गति और क्षेपण दोनों भी ये कराने वाली होती है। वैसे तो सारे अर्थ मिलते जुलते हैं, पर ये बता रहे कि इतने अर्थ हैं, अर्थों की आपस में विशेषता तो है, एक तो सामान्य गति है और एक गति के साथ में क्षेपण भी है, प्रेरणा भी है, तो प्रेरणा करते हैं ना इससे, ऐसे करते हैं, तो इसके कारण ये कर रहे हैं, विशिष्ट गति हो गई। तासाम ऐसा भवती, तासाम अंगुली नाम ऐसा ऋक भवती, दस अवनिभ्य, दस कक्षेभ्यो, दस योक्त्रेभ्य, दस योजनेभ्य, दस अभि शुभ्यो अर्चता अजरेभ्य, दस धुरो, दस युक्ता वेदभ्य, ये सारे अंगुली के विशेषण हैं। दस अवनिभ्य, तो दस अवनिभ्य नाम है, दस भी अवनि भी अंगुली भी ये क्रियंते ते दस अवनिभ्य ग्रावेभ्य, ग्रावा का विशेषण है, जो पत्थर पे सोम कूटते हैं, जिन पत्थरों पे सोम याग की बात चल रही है उनका नाम ग्रावा है, तो वो बिना दस उंगली के नहीं, एक आदमी उंगली टूटी हुई तो ठीक से नहीं होगा, और वैसे यज्ञ में जिसका अंग भंग हो उसको अधिकार भी नहीं, हाँ किसी के एक आर उंगली टूट गई है तो वो, क्योंकि दस से करना है ना मंत्र, सार्थक नहीं होगा उस पर, पर आपत्ति का अलग है, सामान्य रूप से नहीं,
हाथी कटा हुआ तो यज्ञ नहीं कर सकता
ना, कैसे करेगा हाथ कटा हुआ तो यज्ञ, आहुति कैसे देगा,
तो
सामान्य हमारे आर्य समाज की परंपरा से तो सारे यज्ञ कर सकता है, मैं प्राचीन परंपरा से बता रहा हूँ, महर्षि ने तो सबको अधिकार दिया, किंतु ये तीन चार को अधिकार नहीं देते हैं, वो सारा है, पर प्राचीन में अब वो कैसे करेगा यजमान, यजमान को बहुत काम करने हैं, हाथी टूटा हुआ है, दक्षिण हाथ नहीं है और दक्षिण से ही काम करना है, वो तो ये जिद्दी है कि दक्षिण से कहा तो दक्षिण से ही करना है, हमारा तो फिर वाम भी हो जाएगा कि दक्षिण नहीं तो वाम से कर लो, पर वो तो कहते हैं वो जो आज कराने वाले हैं वो तो उनका तो यही मत है कि जो लिखा है वही करना, तो वो नहीं है, बाकी तो वेद ने तो सबको दिया उसमें कहा निषेध है, तो मैं तो आज कराने वाले की कर रहा हूँ, और प्राचीन कराने वाले क्योंकि आर्य समाज में कोई है नहीं तो उन्हीं की माननी पड़ती, आप लोग बन जाओ तो नई परंपरा क्या मतलब ठीक रूप आ जाएगा परंपरा का। और आगे चलें, तो दस कक्षेभ्य, ये भी उंगली का विशेषण है, तो दस कक्षाओं से जुड़ी होती है, अगर ये कक्षा ही नहीं, यहाँ नहीं है तो उंगली कहाँ रहेगी, हाथ ही नहीं रहेगा, तो इसलिए इसको उंगली कहा है। दस योक्त्रेभ्य, योक्त्रेभ्य नाम है, दस भी योजना ही है उपचर्यंते, तो दस उंगलियां ही हैं वो योजना नहीं, उससे जो किया जाता है सब ग्रावे के विशेषण है। दस योजनेभ्य हो गया, योजयन्ति अस्मिन् कर्माणि, दस अभिशुभ्य, और दस अभिशु क्या है, हाँ उंगलियां ही हैं, उनसे जो किया जा रहा है अर्चता, इनके द्वारा आप सोम की अर्चना करो, यानी सोम का रस निकालो। ध्यान देने की बात है, अर्चना क्या है सोम की, ये नहीं कि उसको ऐसे हाथ जोड़ के बैठे हैं, अर्चता है। उसकी वही पूजा है कि उसको कूट के निकाला जाए। कोई कहेगा उसकी पूजा कैसे, कूटा जा रहा है उसको, तो उसको कूट के रस निकालना ही उसकी पूजा है, वही उसकी अर्चना है। ध्यान देने की बात है, जो पदार्थ जैसा है, जिसके लिए बना है, उसका वैसा उपयोग लेना उसकी पूजा है।
दुष्ट को भी कूटना पूजा है,
बिल्कुल। दुष्ट बना इसलिए कि उसकी कुटाई हो, पर आप अधिकारी नहीं है, राजा करेगा। हाँ कोई हमें मारने आ गया, अलग बात है। ध्यान देने की बात,
कहना पड़ेगा इसकी इसकी पूजा कर दो, चलो थोड़ी
कुलंचा नाम पतये नमः। इसका लोग गलत अर्थ करते हैं, जो कुलंचों का पति है, दुष्टों का स्वामी है, उसको नमस्कार करो नहीं तो पिटाई करेगा। लोग इसका अर्थ ऐसे करते हैं कि उसको नमस्कार कर लो, माफी मांग लो, तो पिटाई से बच जाओगे। ऐसा अर्थ बिल्कुल भी नहीं है, वेद का मंत्र है यजुर्वेद का। कुलंचा नाम दुष्टा नाम पतये स्वामी ने नमः, वज्र नाम में पढ़ा हुआ है, उसके ऊपर वज्र फेंको, क्योंकि वो मर जाएगा तो अपने आप भग जाएंगे दूसरे। नमः का अर्थ वहां वज्र है, नमः का अर्थ अन्न भी है, पर उसको अन्न थोड़ी देना है, उसको तो वज्र देना है। हथियार के वज्र के 18 नाम है जो दूर से फेंके जाते हैं, उसके पास में मत जाओ, दूर से ही फेंको। तो ये है उसका अर्थ, तो वो यहाँ है। अर्चत नाम है पूज्यत, ये उसकी पूजा है। और अजरेभ्यो, जो अजर हैं, जो कभी मरती नहीं है, तो अजरेभ्य, ये उंगलियां हमेशा रहती हैं। हृदय खराब हो जाए कुछ भी, अगर एक इनमें खराबी नहीं आती, टूट फूट हो जाए वो अलग बात, आंखों में खराबी आ जाती है, हाथों में खराबी आ जाती है, ये एक प्रकार से अजर हैं। मतलब उंगली बूढ़ी नहीं होती, शरीर बूढ़ा होता, कभी होती है उंगली बूढ़ी? वो तो गल जाए तो किसी का रोग भयंकर आ गया वो अलग है, पर सामान्य रूप से अधिकतर रोग उंगलियों में नहीं होता, क्योंकि इसकी सफाई खूब होती है। अब वो तो पहले उंगली नहीं गली, पहले अंदर बहुत सी चीजें गल चुकी हैं। वो तो जब आप कायाकल्प करोगे आपकी गलेंगी तब निकलेंगे, अभी कैसे निकालोगे, अभी तो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, वो तो छंगुला है तो वो तो ठीक नहीं है, उसको अच्छा नहीं माना शास्त्र में। अधिक उंगली वाला भी विकार में है, उसको भी यज्ञ का अधिकार नहीं दिया है आधुनिकों ने। आगे चलो, दस धुरा दस युक्ता वैद्य, तो दस धुराए हैं। धुरा नाम है धुरवी गति कंपन, धुरा हिंसा है, ये हिंसा भी करती हैं, उंगली तो मारती है। कराटे में जो जानता है, ये अकेली उंगली ही व्यक्ति को केवल ऐसे छूने से मार सकती है, इसलिए यहाँ ऐसे रख के इसके ऊपर खूब लगवाई जाती है पुशअप, है ना, नकल पुशअप। तो आगे चलो, तो ये इसलिए हिंसा भी करने वाली हैं। और दस युक्ता, ये दस जुड़ी हुई हैं, है ना, आपस में संबंध है इनका, दस पैरों की और दस हाथों की, ये युक्ता वैधव्य है, तो ये जुड़ के ही काम करती हैं, बिना जुड़े ठीक से काम नहीं करती। और अवनयो अंगुलयो भवंती अवंती कर्माणि, एक मंत्र का अर्थ ये हुआ, उंगली आई है तो उंगली के जितने भी संबंध है वो सारे बता दिए कि उंगली क्या क्या करती है, मंत्र से ही पूरी बात पता लग रही है। ये अवनि है, दस अवनि बे नाम है, रक्षक है, अवगति रक्षण है, और ये उस काल में किसकी रक्षा कर रही है, सोम को कूट रही है, तो ये याग होगा। ये कक्षा है, और कक्ष क्या था पीछे भी आ चुका है, हाँ कक्षा घात है, गाहु विलोड़ने, तो ये विलोड़न भी करती है, कोई चीज मिलानी हो तो ये उंगलियां ही मिलाती हैं, जितने भी उंगलियों काम है मंत्र में बताए हैं। दस योक्तृभ्य, और ये युज, जितने भी संबंध हैं ये उंगली से ही होता है, ये युजी समाधव धातु से बना है। दस योजनेभ्य, और ये दस जो है योजन भी करती हैं, योजयति संबंधयति विस्तारयति, जितने भी सारे विशेष योजन हो जाएगा यहाँ। दस अभिशु, अभित ईशु क्या है, अच्छी प्रकार से ऐश्वर्य वाली हैं। और इन्हीं की पूजा कर, ये पूजा भी की जाती है इनकी। पर ये सब विशेषण किसके हैं? तो दस अवनय कार्यम कुर्वंती यत्र तस्य नाम है ग्रावण, ये ग्रावण के विशेषण है, ध्यान देने की बात है। यहाँ दस भी अवनी भी उंगली भी स्तुयमान ग्रावण तेभ्य दस अवनिभ्य नाम है ग्रावेभ्य। हाँ, पर वो पत्थरों, ये दस अवनी उसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो दस उंगलियों से कूटा जा रहा है, दस उंगलियों से उसको मिलाया जा रहा है, ऐसे ऐसे, इसलिए साथ में जुड़ गया। अवनयो अंगुलयो भवंती अवंती कर्माणि, ये कार्यों की रक्षा करते हैं। जिसके उंगली नहीं उससे पूछ लो उसके कितने कार्य बेकार हो जाते हैं, होते ही नहीं ठीक से। कक्षा प्रकाशयन्ति कर्माणि, ये कक्षा क्यों कहा? क्योंकि ये कर्मों को प्रकाशित करते हैं। अब देखो ऐसे किया, बोला नहीं तो क्या हुआ? कार्य को प्रकाशित कर दिया कि भाई जाओ। और ऐसे क्या किया? और जब हम व्याख्यान देते हैं तो उंगली तो चलती है, ऐसे किया तो क्या हो गया? ऐसे नहीं,
सावधान हो जाओ।
ये भी साहित्य में बताया जाता है कि इशारा कैसी क्रिया चल रही, उसमें इशारा कहाँ करना है, कैसे करना है, कब हाथ को ऊपर ले जाना है, ये भी भरतनाट्य शास्त्र में सारा बताया हुआ है। ये वक्ता की पहचान है कि ऐसे कब करेगा, ऐसे कब करेगा, ऐसे कब करेगा, ऐसे कब देखेगा, ऐसे गर्दन को कब उठाएगा, ऐसे 15 इशारे हैं व्याख्यानकर्ता को जो आने चाहिए। इसलिए मैं बहुत से इशारे करता हूँ तो मेरे इशारे समझ में नहीं आते कि वो लोक में प्रचलित नहीं है, कि वो भरतनाट्य शास्त्र के अनुसार है। और आगे चलो, उसमें व्याख्यान करना भी सिखाते हैं वो भरतनाट्य शास्त्र में, क्योंकि जो 9 रस का 8 रसों का जो प्रयोग करना है वक्ता को, यदि 8 रसों का प्रयोग करना, एक तो छोड़ ही दीजिए ब्रह्मचारियों के लिए श्रृंगार रस का तो प्रयोग नहीं करेगा, पर जो आगे 7 रस जो हैं उसको यदि वो उसको नहीं जानेगा तो व्याख्यान में कैसे वीर रस का कब प्रयोग करना है तो ये आना चाहिए। आगे चलें, योग त्राणी योजनानी ति व्याख्यातम, दोनों का एक ही अर्थ है, यानी योग त्राणी तानी योजनानी, ये संबंध कराने वाली हैं। अभिशवो अभ्युष्णुते कर्माणी, और अभिशव क्यों? क्योंकि कर्मों को व्याप्त करती है, उंगली ना हो तो कर्म व्याप्त नहीं होंगे। दस धुरो दस युक्ता वेदभ्य, तो ये बता ही चुके हैं, धुर धुर्वते वध कर्मण है, ये धुरा क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये वध कर्म के लिए उंगली आगे चलती है, सबसे पहले गड़ा घोट के मार देते हैं, और उंगली होती है तो और भी बहुत से काम हो जाते हैं। अयम पित्रा धुरा ए तस्मादेव, और जो इसका कंधा होता है ना इसको भी धुरा बोलते हैं, बैल का, क्यों? विहंती वहम धार्य तेरवा, क्योंकि ये कंधा जो है बैल का, इस पे घिस घिस के बेचारा घिस जाता है, वो कंधा दर्द भी होता है उसमें,
उसको बोलते जो रखा जाता है कंधा।
तो वही तो कह रहे धू धुरो धुरा, उसी से तो बना हिंदी में, धू शब्द है वैसे तो। वह धार्य तेरवा, या उसको धारण किया जाता है। कांति कर्मणा उत्तर धातु अष्टादश, अष्टादश कांति कर्म है। अब ये ध्यान देने की बात है, उंगलियां होंगी तो ये संबंध भी आप जोड़ के देखते नहीं, अब जब उंगलियां होंगी तो कांति आएगी कर्मों में, नहीं होगी, ये सारा जुड़ा हुआ है। मनुष्य मत्वा कर्माणि शिव्यन्ति, मनुष्य हो गया, किंतु मनुष्य के कार्य कौन कराएगा? बाहु कराएंगी और उंगलियां कराएंगी, किंतु उन कर्मों में कांति कब आएगी, वो कब होंगे वो बता रहे हैं। कांति कर्मणा उत्तर धातु अष्टादश है, किंतु वो कांति युक्त होने चाहिए। अन्य नामानि उत्तराणि अष्टाविंशति, जब कांति आएगी तो क्या होगा, कब आएगी कांति? जब अन्न का सेवन करेगा, ये सारे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इसलिए क्रम से चल रहे
हैं। अन्न खाएगा तो कांति आएगी, अन्न खाएगा तो कांति आएगी।
पहले जब दुख है उसके बाद में सारा काम है, अविद्या है उसके बाद सारे क्षेत्र है, पहले उसको बताया जाता है मुख्य चीज को। तो मनुष्य मत्वा कर्माणि शिव्यंती कब होगा? जब ये ऐसे ऐसे काम करेगा, ये अंत में जाके पता लगेगा पूरा, अंत में सत्य का निर्वचन करेगा ना, जब वो सत्यवादी होगा तभी वो मत्व कर्माणि सेवन करेगा। वो अंत में तत्व अंत पहले बता दिया है और क्रियाएं क्या क्या करेगा, तब वो मत्व कर्माणि सीव्यते होगा, वो अंत में पता लगेगा। अन्य नामानी उत्तराणी अष्ट 28 अन्य के नाम है, यानी वेद की भाषा में अन्य से के 28 गुण हैं। अन्नम कस्मात आनतम भूतेभ्यो अतेरवा, वो प्राणियों की ओर झुका हुआ है। आनतम नाम है झुका हुआ, भूतेभ्य प्राणियों की ओर झुका हुआ कि आओ मुझे खाओ। कितना फैलाया हुआ ईश्वर ने, फिर भी मनुष्य अभक्ष सेवन करता है। कितने सुंदर सुंदर फल बनाए है ना, कितने सुंदर सुंदर अन्न बनाए, फिर भी अभक्ष पदार्थों का सेवन करेगा। कितना गिर गया है मनुष्य, है ना। और अतेरवा अधे भक्षने से बनाए उसको खाया जाता है। अतिकर्माण उत्तर, अब कैसे खाएगा अन्न को वो आगे बता रहे हैं। अतिकर्माण उत्तर धातु दस, दस धातुएं खाने के कर्म में है, खाने का भी विधान है कि कैसे खाना चाहिए अन्न को। बल नामानी, और बल होगा कब, जब वो अन्न खाएगा, तो एक दूसरे से पूरे जुड़े हुए हैं। बल नामानी उत्तराणी अष्टाविंशति, 28 तो अन्न है और 28 ही बल है, मतलब एक अन्य से एक प्रकार का बल आएगा। बलम कस्मात बलम भरम भवती विभरते, बल को बल क्यों कहते हैं कि भरम भवती, भरम नाम धारियति पोषयति विभरती इति भर तम भरम भवती विभरते, डुबरी धारणे पोषण, क्योंकि बल ही पालन करता है। शरीर में बल नहीं है ना तो पढ़ा सकता ना, रोग आ जाए तो क्या होता है फिर, और बल ना हो तो बुद्धि में बल ना हो तो क्या होगा, और आत्मबल ना हो तो क्या होगा, मौके पे व्यक्ति हमेशा परास्त हो जाता है। धन नामानी उत्तराणी अष्टाविंशति, और बल होगा तो धन भी हो जाएगा और धन होगा तो बल भी आ जाएगा, तो धन नामानी उत्तराणी अष्टाविंशति। देखो ये विशेष वार्ता हो गई, 8 ही तो 28 तो बल के नाम है, धनम कस्मात धिनोती सत्य, व्यक्ति को तृप्त रखता है ना। अगर बुद्धि का बल है तो तृप्त रखेगा नहीं रखेगा, तब तो ज्ञान हो गया, तो ना तो उसको सामान्य धन की सोचेगा ना उसके लिए वो ज्यादा पुरुषार्थ करेगा। अरे तब तो जान लिया, कल का भरोसा नहीं, जीवन नष्ट हो जाए, आनंदित रहो, धर्म के अनुसार जीवन जियो। धिनोती सतह, धीवी प्रीणार्थ धातु है, धीवी प्रीण, धिनोती नाम है तर्पयति प्रीणयति इति धनम। गो नामानि उत्तराणि नव, नौ गाय के नाम है। अब देखिए जब हमारे पास धन आएगा तो गाय आनी ही चाहिए, सबसे पहले धन को कहाँ व्यय करना चाहिए, गाय खरीदने में करना चाहिए, गाय की रक्षा में करना चाहिए, क्योंकि गाय सबसे बड़ा, ये मुद्रा तो कल को आग लग जा नष्ट हो जा कोई भरोसा थोड़ी है, बैंक करप्ट हो जा पैसा ही ना दे तो कहाँ लगाना चाहिए पैसा, क्योंकि गाय सबसे बड़ा धन है। इन्होंने मंत्र नहीं दिया, मंत्र हम ले लेते हैं, अथर्ववेद है किसी के पास है, अथर्ववेद लिया हो, नहीं तो अभी मैं बता देता हूँ क्या करें। हाँ, गाय के बाद क्रोध है, जो हमारी गाय को पकड़ेगा उसकी हिंसा करेगा तो हम उसको क्या करेंगे, शीशे ने त्वा विद्याम, शीशे की गोली से मारेंगे, ये वेद की आज्ञा है। पर क्योंकि ये राजा का धर्म है, हम ये काम कर नहीं सकते, हमें जेल में डाल देंगे, अधार्मिक राज है, अभी भी अधार्मिक ही कहेंगे, क्योंकि मोदी के आने के बाद भी अभी तक 4 महीने में कितनी गोहत्या हो चुकी है, पाप लगेगा मोदी को पूरा पक्का, तुरंत अगले दिन ही बंद होनी चाहिए थी, मतलब वही घोषणा करनी चाहिए थी शपथ ग्रहण करते कि पूरी, तो पापी है मोदी, अभी पाप कर रहा है, उसके राज्य में राजा को, राजा सबसे बड़ा पापी है, क्योंकि ये काम राजा का है, जनता तो अपने स्तर पर रक्षा कर ही रही है, किंतु जब तक राज पूरा बंद नहीं करेगा इसको, तब तक कितना व्यक्ति करेंगे, ये कानून होना चाहिए। हाँ तो पाप तो उनको लग रहा है, राजा बनने के बाद 16 गुना लगता है, ध्यान रखना, विद्वान होने का। हाँ जी, हाँ क्रोध भी 10 प्रकार का है, 10 गुण है उसमें, मतलब गाय हत्यारे पे कैसे करेंगे, दूसरी जगह दुष्ट पे कैसे करेंगे, हर प्रकार का क्रिया वहां नहीं करेंगे ना, गो हत्यारे पे तो ये क्रोध करेंगे है ना। अब जो सामान्य युद्ध में है वो अलग प्रकार का क्रोध होगा, नहीं काटते तो है पर वो ऐसा थोड़ी होगा, वहां दूसरे प्रकार का उत्साह के साथ में होगा, और ये ठीक कह रहे हैं, वहां तो पहले वो शंख बजते हैं, वहां अलग प्रकार का होगा, पर यहाँ क्रोध का अर्थ विमोहन नहीं है, ध्यान रखना, क्रोध का अर्थ संप्रहार है, मन्यु का जो रूप है, नहीं तो उससे तो बुद्धि नहीं बचेगी, पीछे आया था तो बुद्धि नहीं बचेगी, कैसे दूसरे को मारेगा, खुद ही मर जाएगा।
मन्यु दस प्रकार का ऐसा।
हाँ ऐसा है, क्रोध का अर्थ वो नहीं है कि क्रोध का अर्थ चित्त पे नियंत्रण चला गया, वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा फिर, वो क्रोध नहीं है जो लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ मन्यु का पर्यायवाची क्रोध है। यहाँ तो गो का देख लो, यूयम गावा, ये अथर्वेद का है, यूय एक सुक्ति है पूरा, यूयम गावा मेदयता कृशम, रहने तो देख लेना आप, देख लेना भी बाद में, मैंने बता दिया कल देख लेंगे। यूयम गावा मेदयता कृशम, हे गावा यूयम कृशम मेदयता, जो कमजोर हैं बुद्धि से और बल से, उनको गाय का दूध घी आदि क्या कर देता है, पुष्ट कर देता है। अशरीरम चेत कृणुते सुप्रतीकम, और जो अशरीर नाम है अश्लील, अर्थात जो सुंदर नहीं है बुद्धि से मन से और शरीर से, उसको क्या है, सुंदर बना देता है। तो ये गाय के दूध घी दही में ऐसी ताकत। तो ये गाय का मंत्र हो गया, आगे चलो, वहां गाय ही लिखा हुआ है सीधा। क्रुध्यति कर्माण उत्तरे धातव दश है, और जो हमारी गाय की हिंसा करेगा उस पर हम क्या करेंगे, क्रोध करेंगे, इसलिए ये बताया है। बताओ, बोलो, तो दोनों जगह आया फिर ये। हाँ बोलो पूरा मंत्र, कुरुते सुप्रतीकम, बताओ सबको, ऋग्वेद लाए हैं क्या, कल्याण कल कर लेंगे इसकी व्याख्या, उन्हें सब नहीं लाए तो मैंने व्याख्या करी थी, वही मंत्र है। मंत्र बहुत से ऋग्वेद के और अथर्वेद के आपस में मिले हुए हैं, तो ये सुक्ति यहाँ भी होगा। तो क्रुध्यति कर्माण उत्तरे धातव दश, दस जो है ना वो क्रोध यानी मन्यु के अर्थ में दस धातुएं हैं। और आगे ये तो क्रिया है दस प्रकार की, और क्रोध के नाम भी दस हैं। तो क्रोध नामानि उत्तराणी दस है, हेड है, हर है, हिरणी, त्यज है, भाम है, ये है। मन्यु भी पढ़ा हुआ है क्रोध नाम में, ध्यान देने की बात है। हाँ मन्यु भी, तो वही बता रहा हूँ ना, क्रोध का एक पर्यायवाची बुद्धि पर नियंत्रण रहेगा। आचार्य छात्रों के ऊपर मन्यु करेगा, सन्यासी भी करेगा और माता पिता भी करेंगे, पर वो उन्नति के लिए होगा। क्रोध नामानि उत्तराणि एकादश है, क्यों श्रीधर जी, मन्यु से काम भी हो जाता है ना। हो गया था, नहीं हो गया था,
ठीक है।
गति का धातु है द्वाविंश शतमिति। अब श्रीधर जी से मैं निवेदन कर रहा था डेढ़ महीने से कि मकान खाली करो, मकान खाली करो, मात ये इनकी कमर में दर्द हो नहीं पाया, एक दिन प्रयोग किया मन्यु का तो मकान खाली हो गया। गति करवाने उतने धातु द्वाविंश शतमिति। तो अब उसके बाद में गति होगी, अब युद्ध के मैदान में क्रोध कर लिया है, मन्यु का प्रयोग कर लिया, तो उसके बाद में गति होगी। गति कैसे होगी, गोहत्यारों का नाश होगा, शत्रुओं का नाश हो गया। तो क्रोध जो है उत्साह का एक रूप है मन्यु का, उसके बाद गति होनी चाहिए सीधी। अब आगे देखो, गति कर्माण उत्तरे धातव द्वाविंशम शतम, तो 122 है, ध्यान देने की बात है। द्वाविंश का अर्थ है द्वाविंशम शतम, द्वा अधिकम विंशम द्वाविंशम, और द्वाविंशम शतम 122। हाँ जी, यदि हमें 102 को कहना है तो कैसे कहेंगे संस्कृत में, द्विशतम,
हैं?
और यदि 200 को कहना है, ये तो व्यवहार आना चाहिए ना। एक पृष्ठ लिखा करो जिसको समय रोज मेरे को दिखाया करो लिख लिख के, हैं? ये कच्चे की भाषा मत बोलो आप, व्याकरण हो, कैसे लिखेंगे? तीन सौ और 103 दोनों में क्या अंतर है संस्कृत में लिखने में? त्रीणी शतानी, वहां ऐसा लिखना पड़ता है, नहीं तो वही निकलता है 103, ऐसा लिखना पड़ेगा। अब शतम तो हो ही गया, तो एक शतम मतलब सौ तो है ही सतम कहने से, तो एक सतम ना लो 101, से उसमें एक लगाने की अपेक्षा नहीं हो, तो सतम अपने अर्थ को कह रहा है, उक्तार्था नाम अप्रयोग यथा तो अनेन किम
दो कह दिया फिर अपूप कह दिया,
अपूप याद रहे यदा कदा भवति सर्वथाना। आगे चलो गुण क्षिप्र नामानि उत्तराणि षड्विंशति, और जब व्यक्ति गति करता है तो उसकी गति कैसे होनी चाहिए, तीव्र गति से होनी चाहिए। अगर युद्ध में तो अगर धीरे धीरे करेगा तो क्या होगा, इतने तो सेना बहुत आगे पहुंच जाएगी शत्रु की, तो तीव्र गति से। तो क्षिप्र नामानि उत्तराणि षड्विंशति, क्षिप्रम कस्मात, अब ये ध्यान देने की बात है, संक्षिप्त है विकर्ष, विकर्ष का अर्थ है विस्तृतम, कर्ष विकर्ष है, जो विस्तृत था उसको संक्षिप्त करने वाला ही क्षिप्र होता है। जैसे एक कार्य है, एक व्यक्ति ने व्याकरण में लगाए 10 साल, कहीं है शायद अपने पास 8-7 वाले तो होंगे ही,
नहीं
है रामकिशोर जी, नहीं है शायद 10-12 साल लगे उनको,
तो उनको भी नहीं लगे, उन्हें तो खानपुर में जाकर शुरू किया था।
अच्छा चलो, किसी ने अगर लगाया ऐसा 5 साल लगा लो, ऐसे 4 साल अधिकतम होना चाहिए व्याकरण में, अगर ज्यादा लगाया तो क्या था वो, विकृष था, विकर्ष था, अर्थात वो फैला हुआ था। उसको जो संक्षेप में करना है, शीघ्र करना है, तो उसके लिए आपको क्षिप्र नाम पढ़ने पड़ेंगे, अर्थात जल्दी करनी पड़ेगी। यहाँ से आपको जाना है दिल्ली, पैदल जाएंगे तो, और यदि आपको जल्दी पहुंचना है या तो अपना हेलीकॉप्टर में बैठो, और नहीं तो अपनी गाड़ी से जाओ, जेट से जाओ। तो वही है कि जो फैला हुआ होता है उसको जो संक्षेप करने वाला है वो क्षिप्र है, उसके बिना नहीं होता। अंतिकम कस्मात आनितम भवति, अंतिकम नाम है, समीप नाम है, और जा है?
दोनों से अलग अलग से
क्या बताया,
संक्षिप्त
नहीं, संक्षिप्त विकर्ष है, विकर्ष है कोई तो खोल रहा है, विकर्ष है संक्षिप्त है, विकर्ष क्या है विपृष्ट विस्तार, उसको जो संक्षेप करना है वो क्षिप्र है। यहाँ क्या बताया,
अलग अलग संक्षिप्त का अलग व्याख्या,
क्या किया अलग, वो अलग व्याख्या तो अलग होगी, पर अर्थ तो एक को ही कह रहे हैं, संक्षिप्त का अलग व्याख्या तो मैं भी कर रहा हूँ, और इन्होंने क्या किया है, घटेगा ही वो अर्थ उसके खोल रहे, विकर्ष था यानी विस्तृत था, उसको जो किया क्षिप्रता के द्वारा वो क्या हो गया, संक्षिप्त हो गया, यही तो घटेगा। अंतिकम कस्मात आनीतम भवति, अब देखो जो जल्दी करता है उसके जल्दी पास में चीजें आ जाती हैं, देखो एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं, जिसने जल्दी की क्षिप्र किया तो जो अभी दिल्ली दूर था उसको क्या आ गया, जल्दी, और जो मोटरसाइकिल से या साइकिल से पहुंचेगा उससे तो अभी भी वो विकर्ष है, तो इसलिए अंतिक नाम आ गया। संग्राम नामानि उत्तराणी, और पास में रह के संग्राम भी होता है इसलिए हम अमेरिका से नहीं लड़ रहे, पाकिस्तान चीन से लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी सीमा मिली हुई है, जिससे हमारी सीमा ही नहीं मिली तो लड़े झगड़ा ही नहीं उससे, तो पास में रहने से लड़े झगड़ा, इसलिए अनंतरस्य विदिर्वा भवति भाष्यकार ने कहा भी हुआ है, संग्राम फिर इसलिए संग्राम होता है पास में रहने से। संग्राम नामानि उत्तराणि षट चत्वारिंशत, तो 46 संग्राम के नाम है, संग्राम है कस्मात संगमनात, संगच्छन्ति योद्धारा परस्परम यस्मिन स संग्राम, संगरणात खूब जोर जोर से चिल्लाते हैं, उधर उस क्षेत्र में जाओ, वहां उसको मारो, वो उधर से आ रहा है, गृह शब्द, और संगतौ ग्राम हुई थी, दो गांव का ग्राम का अर्थ क्या है, कितने अर्थ है भाष्यकार ने कहे, भाष्यकार ने ग्राम के कितने अर्थ माने हैं वो तभी समझ में आएगी ये पंक्ति, कियंत है अर्थात तत्र भगवतः पतंजलिनः महाभाष्ये प्रतिपादिता इति उच्यताम, यथा
गांव की सीमा को गांव कहते हैं,
अन्य
अन्य
समूह समूहत्र समूहार्थ वर्तते, संगतौ ग्रामौ अर्थात ग्रामौ समुदायौ अत्र संगतौ, यहाँ दो समुदाय लड़ते हैं, बिना तो एक समुदाय से तो लड़ाई होती नहीं, लड़ने वाला सामने चाहिए, तो इसलिए इसका नाम संग्राम है। तत्र खल तस्य निगम भवंती। तो खल जो इसमें संग्राम नाम में पड़ा हुआ है, इसका मंत्र है ये, मैं पहले भी इसकी व्याख्या कर चुका हूँ, इसलिए अपेक्षा है क्या इसकी व्याख्या के भी। अभिदम एकम एको अस्मी अभि निस्साड़ अभि द्वा किमु त्रय क्रंति खले न प्रसान प्रतिहनमी भूरी किम माम निंदंती शत्र व निंद्र। चंद्रगुप्त महोदय व्याख्या करनी है इससे, मैं एकदा कृता पूर्व। ठीक नहीं हो रही व्याख्या, व्याख्या की तरीके से बोला करो, भाव बता रहे हो। अभी इदम इदम अभी अभी अभिमुखे न एकम एकस्य कृते अहम एको अस्मि, मेरे जो सामने शत्रु खड़ा है यदि अकेला है तो मैं उसके लिए अकेला ही हूँ, मतलब मैं उसके लिए भी काफी हूँ। और निस्साड़ भी निस्साड़ अभी सहमान शत्रु नहन, मैं शत्रुओं को नष्ट करने वाला। द्वा यदि आगच्छेयु किम उत्तरेय करंती तदापि हम एकाकी पर्याप्त अस्मि, कथम शत्रु नहम अभिहनमी खले इव परसान खले यथा धान्य क्षेत्रे परसान धान्य कनान यथा कृषक लुनंती छेदयंती ताड़ियंती मारियंती तद्वते प्रतिहनमी भूरी, अहम अत्यधिक रूपेण शत्रुन प्रतिहनमी, प्रतिहनमी नाम है प्रतिगत्यहनमी, उनके पास जाके मारता हूँ, मैं पीठ नहीं दिखाता हूँ। किम मा निंदंती शत्रवो अनिंद्रा, किम केन हेतु ना मा मम योद्धारम निंदंती माम निंदाम करवंती, ऐसा तो किमपि नासीत युद्धम करो तो पराजय मापनोती थी, यथा किम कृतम 1962 में क्या हुआ, नहीं 62 को तो छोड़ दो हम पराजित हुए थे पहली बार, 1966 में 71 में क्या हुआ कि 66 में समझा गया कि भाई अपने वो बैठे हुए हैं बूढ़े से व्यक्ति, अपने लाल बहादुर शास्त्री छोटा सा व्यक्ति अयूब खान ने सोचा, जो वहाँ का सेनापति कब्जा करके बैठा हुआ था, उसने सोचा कि क्या करेगा ये तो सामान्य, इनको दाने भी अमेरिका से मंगाने पड़ रहे हैं खाने के लिए, अच्छा मौका है कि इनको पराजित कर दो, है ना। तो उर्व ऐसे लोगों के लिए किम माम निंदंती, अच्छा ऐसा सोचा था हमारे बारे में आपने, अब देखो मैदान में क्या दिखाते हैं आपको। शत्रवो अनिंद्रा, जिसका इंद्र मित्र नहीं है वो क्या हमारी निंदा करेंगे, अर्थात वो तो मरे हुए हैं, बाद में समाप्त हो ही गए थे वो युद्ध में, चीर से तो इसलिए हार गए कि नेहरू जैसे प्रधानमंत्री बैठे हुए थे जिन्होंने हथियार बनाने की अपेक्षा और कुछ बनाना प्रारंभ कर दिया, नारे नारे चीनी हिंदी चीनी भाई भाई, वेद की आज्ञा क्या थी, वेद की आज्ञा मित्राद अभयम अमित्राद अभयम जाताद अभयम परोक्षात, वेद की आज्ञा थी कभी राजनीति में कोई किसी का मित्र नहीं होता, देश की रक्षा में कोई किसी का मित्र नहीं, देश की नीति मुख्य है, हिंदी चीनी भाई भाई। उन्होंने सोचा ये तो यार सब कुछ दिखा दिया कि कुछ है ही नहीं इनके पास, तो कर लो कब्जा। और जो मेनन जो थे रक्षा मंत्री वो विदेश में बैठा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं था राष्ट्र से देश से, कम्युनिस्ट विचारधारा वाला व्यक्ति था, उसको तो था ही कि चीन आक्रमण कर ले तो बढ़िया, जब चीन ने आक्रमण किया कम्युनिस्ट बंगाल वाले क्या चिल्ला रहे थे, बहुत अच्छा हुआ हमारे भाई आ रहे हैं स्वागत करो उनको, ऐसे लोग देश में तो फिर तो हारेंगे। यहाँ तो 200 लोगों ने, जो शैतान सिंह था मेजर, 2000 को मारा है चीनी को, इतनी ताकत थी हथियार नहीं थे तब भी, भारतीय सेना के सामने टह नहीं सकता क्योंकि ये मानते हैं कि मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, तो ये तो खूब लड़ते हैं वो तो भाग जाते हैं। मुस्लिमों का एक है कि पहले हमला जरूर करते हैं वो, हमारी खूबी क्या कि हम पहले झेलते हैं, जैसे ही प्रत्याक्रमण होता आज तक कोई टिका हो तो बता दो, अच्छा यहाँ देख लो दंगों में यहाँ देख लो, तो प्रति आक्रमण नहीं झेल पाते हैं शत्रु लोग जो हैं, और हम प्रति आक्रमण ही झेल करते हैं, हम वैसे करते ही नहीं क्योंकि हम धार्मिक लोग हैं, हम तो जब लगते हैं कि अब मरने वाले हैं तो चलो उपाय करो, वो उपाय के रूप में इतना जबरदस्त होता है कि सामने वाले से झेलते नहीं, ये हमारी संस्कृति में है भी। आगे चलो, और ये भी है कि उसके घर में जाके मारे अगर शत्रु बलवान है तो, अब मानसरोवर होता हमारे पास तिब्बत होता तो गुरुकुल वहीं खोलते, इतनी सुंदर जगह है वहां से आने की इच्छा नहीं होती। आगे चलो, अभी भवामी इदम एको एवेक अस्मी निशहमान सपत्नान को मारता हुआ दो की मावा त्रिय ग्रंथि, इसकी व्याख्या की ज्यादा जरूरत नहीं, दो बार आ गया, ये जरूर देख लें। एक है इता संख्या, एक को एक क्यों कहते हैं, एकम कस्मात, एक अकस्मात, एक अकस्मात, तो पूछ रहे हैं कि इता संख्या, इता नाम है, इन गत धातु से एक बनता है कन प्रत्यय होके, तो ये इता, इता नाम है प्राप्ता, सबसे पहले वही संख्या प्राप्त होती है इसलिए वो एक है। कंप्यूटर भी जैसे मैं समझता हूँ कि वो पहले एक को ही समझता है, आगे गणना बाद में ही करता है। शून्य तो विस्तीर्णतम संख्या है, दो द्रुततर संख्या, दो को दो क्यों कहते हैं, क्योंकि द्रुततर है, द्रुततर कैसे है कि एक की अपेक्षा ही आगे बढ़ा, इसी से आगे बढ़ा है। दूसरी संख्या क्या हुई जो गति कराने वाली संख्या है, वो दूसरी दो है। त्रय तीनतम संख्या, ये इसी के बाद में बहुवचन पूरा होता है इसलिए विस्तार हो जाता है, तीन में बहुवचन पूरा हो जाता है ना, तीन में दुकान चलती है, तीन में सृष्टि चल रही है, दुकानदार समान और ग्राहक, एक भी कम हो जाए तो कुछ नहीं चलेगा, प्रकृति ना हो, जीवात्मा ना हो और ईश्वर ना हो तो संसार नहीं चलेगा, तो ये तीनतम संख्या होगी, यहीं से विस्तार हुआ है, तीन चलता है इसलिए तीन ही गुण है। चत्वारा चलिततम संख्या, ये तीन से आगे बढ़ाने वाली है, इसी में नहीं बना, इससे आगे भी जाना है। अष्टौ असनोते, यहां से व्यक्ति व्याप्त हो जाता है, इसलिए आठ की पौराणिक समुदाय में बड़ी महत्ता है। हाँ, और हमारे वेदों के अंग भी क्या है, छह है वैसे तो, हाँ अष्टचक्र नर द्वारा, ये आठ का मतलब यहाँ से व्याप्ति प्रारंभ हो जाती है, सात तो मुख्य प्राण हो गए हैं, आठवें से व्याप्ति प्रारंभ हो जाती है। सातवा लोक है, सात लोक है और आठवें से आठ वसु हैं व्याप्त करने वाले हैं। नव नवनिया, ये सेवा करने के योग्य नहीं होती नौवीं संख्या, इसलिए नौ के बाद काम रुक जाते हैं, इसलिए कोई नौ रुपए दान नहीं देता है ना, नौ का बड़ा झगड़ा है, क्योंकि इसको विभाग नहीं किया जा सकता, नौ प्राण भी हैं उनको विभाग नहीं, उनकी अपनी सत्ता है। तेरह सेक्टर नहीं रखा क्यों,
मतलब
हमारे यहाँ तो तेरह बहुत अच्छा है, दस तो संख्या पूरी होगी और तीन आत्मा परमात्मा प्रकृति हो गई। चलो तेरह तो यहाँ नहीं दिया इन्होंने, न वननिया न अवाप्ता, वही इसने पूर्णता को प्राप्त नहीं किया कि दस में जाके पूर्ण होगी, दस है दसता, यहाँ के बाद में पूर्ण होगी, दस है ना उपक्ष है, संख्या दस ही होती है, उसके बाद तो दस जमा एक ग्यारह, आगे तो वही दस दस जोड़ के चलते रहो। हम आपको आगे आज तो नहीं ले जाएंगे, किस दिन ले जाएंगे कि अंततः कैसे गिनते हैं, आज तक लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए, हमारे ऋषियों ने इतना गिना हुआ है, पर आज तो पाद पूरा कराना है। दस दसता दृष्टार्थावा, यहाँ से चीजें दिखाई देने लगती हैं है ना, दस जमा एक, दस जमा दो, दस जमा तीन, दृष्ट प्रयोजन भी है इसका दस का। विंशति, अब विंशति कैसे बना, हम बीस तो बोलते हैं पर ये बीस कैसे बना ये नहीं बताते हम, द्विदशत, दस को दो बार रखो क्या हो गया बीस हो गया। और निर्वचन करना है तो वो भी लिख लो, द्वि द्विआवृता दस, दस की दो बार आवृत्ति करगी, द्वि त्रि चतुर्भ्य सुच, सुच प्रत्यय हो गया और उसके बाद तसी हो गया पंचम्यास तसी। वीर आवृता दस, जिसकी दो बार आवृत्ति की गई है वो बीस हो गया, दस की दो बार आवृत्ति की गई है वीर दस हो गया, ऐसे ही सारे घटा लेना। शतम दस दस, सो कैसे बना, दस की दस बार आवृत्ति करो सो हो गया। सहस्रम सो की दस बार आवृत्ति करो, अब सहस्रम दस्त है, सहस्रम दस्त है, ऐसे जोड़ते रहो सब जगह दस्ते दस्ते करते रहो, हजार हो गया। अयुतम तो हजार को दस बार करो क्या हो गया, दस हजार हो गया। नियुत को दस हजार को दस बार जोड़ो क्या हो गया, लाख हो गया। लाख को जोड़ो दस बार क्या हो गया, दस लाख हो गया। और उसके बाद में अर्बुद हो गया, अर्बुद को दस लाख को दस बार जोड़ो करोड़ हो गया। ऐसे उसको अनबार जोड़ो अर्ब हो गया, उसको वो जोड़ो ऐसे प्रारंभ में चले जाओ। कितना सरल तरीका बताया हुआ, छोटा सा बच्चा भी एक बार में समझ ले, ये हमारी संख्या गणने का तरीका है। तो देखिए आर्य लोग कहाँ तक संख्या जानते थे, लोग कहते हैं संख्या, ये तो हमारा 7000 वर्ष तो इसको आधुनिक वाले लगभग मानते हैं कुछ पक्ष, तब तो ये लोग जंगली थे, तो संख्या हम कहाँ तक पहुंची हुई थी हमारी। और एक गणना और है, जो तारों के प्रकाश की गणना करते वो भी हमारे पास है। हाँ, उसका हमारे जीवन में क्या संबंध है? हमारे जीवन में प्रकाश की गणना का गति का तो सीधा संबंध नहीं ना, कि जो प्रकाश गणना के लिए जो गति चाहिए, अब यहाँ से 4 करोड़ वर्ष तो हम रहेंगे नहीं, एक तारे का प्रकाश यहाँ 4 करोड़ वर्ष में आएगा, उसको कैसे गिने हो? क्योंकि उस पर हमें पहुँचना भी है, तो उसकी गणना भी हमें आनी चाहिए, वो गणना भी है। ये सारी गणना, बहुत सी गणना तो वहाँ काम आती है हमारी, वो भी कभी, वैसे ज्योतिष का विषय उसी पे ज़्यादा चर्चा कर लेंगे उसकी। आगे देखें, अम्बुदा मेघो, अम्बुदा का अर्बुद दिया होगा कहीं, अम्बुद दिया होगा, क्या दिया आपके में? हाँ, अर्बुद का अर्थ है कोटि, 1 करोड़, 10 लाख में जब 10 से किया तो 1 कोटि हो गया। अम्बुदा मेघो भवती, तो अम्बुद मेघ है, अर्बुद मेघो, अम्बुद मेघ है, जलम ददाती, अरणशीलम अम्बु, और जल क्या है? गतिशील है। तब 2 अम्बुद है उसको देने वाला है, जो अम्बु मद भाती थी, वो जल के समान ही दिखाई देती है। अब कि जब मेघ बरसता है तो कोई गणना कर सकता है कि कितनी बिंदु गिर रही, तो कोटि भी ऐसे ही है। वह अम्बुवत भवती थी, वो मेघ के जलों के समान ही होता है, जैसे उसको गणना नहीं किया जा सकता। ये भी मतलब बता रहे हैं कि बहुत अधिक संख्या है करोड़ वाली। इसके बाद तो परार्ध, परार्ध की गणना करनी होगी तो कैसे गणना करेंगे? मतलब परार्ध से हम किसको बताएंगे कि ये परार्ध है? ये है ब्रह्मा के कल्प को गणना करने के लिए परार्ध संख्या का प्रयोग है, ये ध्यान देने की बात है। ब्रह्मा के दिन चल रहा है या रात्रि चल रही है, कितना उसका हो गया और कितना बचा है, उसको वह हमारे लिए प्रार्थ नहीं है, उसकी गणना के लिए ये प्रार्थ है। एक कल्प का एक ब्रह्मा होता है, यानी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जो है उसका अभी प्रार्थ चल रहा है, मतलब आधा लगभग हो गया है, तो उसको गणना के लिए वो संख्या है, ध्यान देने की बात है। तो हम कहाँ तक पहुंचे हुए थे आप समझ सकते हैं, ये तो अंग्रेजी में तो है नहीं सब सारी चीजें। तो हमने इस सृष्टि की पूरी आयु, इसी की आयु नहीं, हम जब तक मोक्ष में रहेंगे 36,000 बार ये बिनेगी बिगड़ेगी, उसकी भी हमने आयु निकाली हुई है कि हम कब तक मोक्ष में रहेंगे। तो ये गणना कब काम आएगी? जब मोक्ष में जाएंगे, तो मोक्ष में जाना चाहिए तभी तो आपके ऊपर ये गणना घटेगी। और आगे चलो, तो समझ सकते हैं कि ऋषियों ने कहां तक हमें पहुंचाया हुआ था। स यथा महान बहुभवती वर्ष तदी अर्बुदम, जैसे वो वर्षा करता है तो बहुत महान हो जाता है। बादल की महत्ता क्या है? वर्षा करे, नहीं तो महान कहाँ है? कंजूस है फिर वो तो। भाई व्यक्ति के अंदर पानी है और लोग तड़प रहे हैं, यदि वो नहीं देता तो महान होगा क्या वो? ऐसे जो दान दाता है वो महान हो जाते हैं, कंजूस व्यक्ति सड़ते रहते हैं इस जन्म में भी और अगले में भी। खले न परसान प्रतिहनमी भूरी, खले परसान प्रतिहनमी, जैसे खलों में धान को कूटते हैं, खले इति संग्राम नाम है, खलतेरवा इस खलतेरवा, या तो उसमें खल है, उसमें एक दूसरे को अधोपतन करते हैं, गिराते हैं, हाथ पैर तोड़ते हैं, अथवा वो इस खलतेरवा, या उसमें क्या होता है, हिंसा की जाती है एक दूसरे की, स्खलन हो गया, हिंसा होगी। अयम अपित्रा खले तस्मादे समास कन्नो भवती, ये जो अपना धान्य है ना, जहाँ धान्य को कूटते हैं, खलियान जिसको बोलते हैं, यहाँ भी एक दूसरे को कूटा जाता है ऊपर नीचे करके धान्यों को। यह इंद्रम ने विदु, इंद्रो ही अहम अस्मि, जो इंद्र को नहीं जानते, मैं तो इंद्र का मित्र हूँ तो इंद्र ही हूँ। इंद्र क्या है आगे, यहाँ कटा हुआ है मेरे ना, इंद्रो अहम अस्मि अनिंद्रा इतरे थी, और दूसरे इंद्र है नहीं तो वो मेरे से क्या टकराएंगे, मरना ही उनको। तो व्याप्ति कर्माण उत्तर धातु दस है, उसके बाद में जब संग्राम में समाप्त हो जाते हैं ना शत्रु, तो फिर व्याप्ति हो जाती है, हमें चीजों की प्राप्ति हो जाती है, वो क्षेत्र भी हमारा हो जाता है जो दुष्टों का था, और हमारा क्षेत्र विस्तार को प्राप्त हो जाता है, और लोग अपने सुखी रहते हैं जब दुष्ट मर गए, तो लोग सुखी रहते नहीं रहते, तो इसलिए व्याप्ति कर्म आ गई आगे। तत्र द्वे नामनी आक्षाण अश्नुवान आपान आपनुवान, इसका अर्थ क्या, आक्षाण नाम है अश्नोति व्यापनोति इति, आक्षाण और अश्नोति व्यापनोति इति आपनुवान, दोनों का एक ही अर्थ है, आपान आपनुवान इसी को इन्होंने खोला है। आक्षाण का क्या अर्थ है, आपान आप लिरी लंबने, लंबयंती आपनुवंती प्रापनुवंती इति आपान आपनुवान। वध कर्माण उत्तरे धातु त्रेत्रिंश, जब हम व्याप्त हो जाते हैं संग्राम में तो अब हमने जो शत्रु बाद में बसते हैं उनको भी हम, और हमारे अंदर जो संग्राम चल रहा है ये सब कुछ अपने अंदर भी घटा के देख लेना चाहिए, जो हमारे अंदर असुरों का संग्राम चलता है तो उनको वध भी कर देते हैं हम जब हम सत्व में होते हैं। तत्र वियात इत्येतद् वियातयत इति वा वियातय इति वा, ये दो हैं, ये सुबंत हैं दोनों इसमें जो पड़े हुए हैं वध कर्मान में। तत्र वियात इति वियातयत, वियातय को कैसे खोल रहे हैं, वि विशेषेण यातयत इति वियात, वियात है जहाँ अच्छी प्रकार से व्यक्ति को मार दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है वृत्तियों को, और वियातय इति वा, या उसमें क्या कहते हैं वहाँ भो भो सत्रवा शांति वियातय वियातय गच्छ गच्छ, उनको वहाँ वहाँ जाके मारो। आखंडल भी पढ़ा हुआ उसमें प्रहु यसे, तो आखंडल हे आखंडल संबोधन में, हे आखंडल इन आखंडल इंद्र का विशेषण है, हे आखंडल शत्रुओं को अच्छी प्रकार खड़ी विखंडने, शत्रुओं को अच्छी प्रकार मारने वाले इंद्र प्रहु यसे अस्मा भी, हम आपको बुला रहे हैं आप आइए, तो उसी को खोला आखंडित आखंडनम अस्मिन संजात इति, आखंडित इंद्र मारने वाले इंद्र आओ और हमारी रक्षा करो। तड़ित इति अंतिक वधयो, और तड़ित भी जो है इसमें पढ़ा हुआ है, ये अंतिक का पास का भी नाम है और वध का भी नाम है, संश्रिष्ट कर्म है, ये दोनों का मिला हुआ है। ताड़यति इति सत, ताड़यति नाम है, ताड़यति मारयति और पार्श्वे आनयति, दोनों इसके नाम हैं। तो जो अंतिक नाम है उसको आगे खोल रहे हैं, निर्वचन कर रहे हैं, इसमें बता रहे हैं, त्वया वयम सुवृधा ब्राह्मणस्पते स्पार्हा वसु मनुष्य आददीमहि, या नो दूरे तड़ितो या अरातयो अभिसंति जंभया ता अनपनस। ये बड़ी विशेष बात है, देखो मनुष्य का वहाँ मंत्र नहीं दिया था, यहाँ मनुष्य का मंत्र आ गया, वैसे मैंने आगे इसलिए वहाँ नहीं बताया था कि यहाँ मंत्र आ रही है। त्वया वयम सुवृधा, हे ब्राह्मणस्पते संबोधन में, कैसे पता लगा कि ये संबोधन में, के नेतु न जायते अत्र संबोधनम, अन्य द्वितीय बृहस्पति शब्दम गुण कुत्र भवति, संबोधन भवति, हाँ ब्राह्मणस्पते और बृहस्पति एक वार्ता वर्तते वेदे, ब्राह्मणस्पते और बृहस्पति अर्थे भेदो न वर्तते, कुत्र वर्तते, ऋग्वेदे अथर्वेदस्य प्रारंभेश मंत्र वर्तते उच्यताम, ये त्रिशप्ता पर्यन्ति विश्वा रूपाणि विभ्रत वाचस्पति ब्राह्मणस्पति और बृहस्पति, एकाय वार्ता वर्तते, तत्त्वम एकमेव धातु प्रत्यय भिन्नम। तो तया वयम हे ब्राह्मणस्पते, गुण जाता ना संबोधने, हे ब्राह्मणस्पते सुविधा तया वयम, हम आपके द्वारा सुविधा सुष्टु वर्धिता संत है, हे ब्राह्मणस्पते आपने हमें बहुत अधिक बढ़ाया हुआ है, हम आपके द्वारा बढ़े हुए हैं, और इस्पारहा, किंतु क्या है, जो इस्पारहा नाम है स्पर्धनीय, जो स्पर्धा के योग्य है, ऐसी जो सुंदर वस्तु है, जब जी किसी के पास एक के पास आता है तो दूसरा भी चाहता है, ऐसा जो वशु, वशु धन नाम में पढ़ा हुआ है ना, ऐसे जो धन है मनुष्य आददीमहि, इसके दो अर्थ हो सकते हैं, मनुष्याः मनुष्येभ्य आददीमहि, तो मनुष्यों के लिए आप दो, या पंचमी करेंगे तो मनुष्येभ्य आददी, मनुष्यों से लेके हमें दो। अब जैसे जो उद्योगपति हैं जिनके पास धन है और हमें उस धन की जरूरत है, गुरुकुल खोलना है ना, तो हमें क्या करना, कर प्रार्थना करनी पड़ेगी ईश्वर से कि हे ईश्वर जिनके पास हमारे लिए वस्तुएं हैं उनसे लेके हमें दो, अर्थात उनके मन में ये प्रेरणा करो कि वो हमें आके दें कि भाई ये अच्छा कार्य, आप इस कार्य को करो। या नो दूरे जो दूर हैं, या जो धन न अस्माकम पार्श्वे अस्माकम कृते दूरे संति, अस्मात् दूरे संति, अस्माकम कृते तो संति किंतु अस्मे अस्मद् दूरे तिष्ठन्ति। देखो वेद क्या कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित तेन त्यक्तेन मागृध अहम भूमिम अददाम आर्य। ये भूमि किसके लिए है, भूमि के अंदर जितने भी पदार्थ हैं किसके लिए हैं, और दुष्टों ने तो इस पे कब्जा किया हुआ है। सीधी बात है, हमारे आलस्य और प्रमाद के कारण, ध्यान देने की बात है, उन्होंने पुरुषार्थ किया हुआ है, और हम पत्थरों में लगे रहे, हम समुदाय में लगे रहे, हम जातियों में लगे रहे, हम अपना सत्यनारायण की कथा में लगे रहे, उसके बाद थोड़े बहुत शास्त्रों को पढ़ के लगे गए, वेदों को हमने छोड़ दिया, तो ईश्वर ने हमें दंड दिया है, ईश्वर ने हमें दंड दिया कि भई आलसी प्रमादी हो गए, वेद को छोड़ दिया तो इनको दंड दो, तो हमारा राज्य चला गया, हमारे आचरण चले गए, सारा कुछ हो गया। तो अब क्या है कि धन तो हमारा है आर्यों का और है दूसरों के पास, तो क्या होना चाहिए, तो वही प्रार्थना कर रहे हैं, या ना दूरे है तो हम यह न अस्माकम कृते वर्तते किंतु अस्मत् दूरे वर्तते, हमारे पास में नहीं है, और तड़ितो वा या जो पास में है, पास में तो है किंतु कोई देता नहीं है ना, बहुत लोगों ने आर्यों ने भी खूब पास में रखा हुआ है किंतु अच्छे काम में विद्या में खर्च नहीं करना चाहते हैं। हाँ बिल्डिंग देखो आपने ठीक कहा, बिल्डिंग भी चाहिए और काम भी चाहिए, पर मुख्य काम वेद को छोड़ के नहीं चाहिए, क्योंकि ये मुख्य धर्म है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का, तो पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए आर्यों का, वेद का जहाँ पठन पाठन हो वहाँ लगना चाहिए, लग रहा है दूसरे काम में, तो वो तड़ित करती हो गया कि है तो अपना ही आर्यों के पास ही है पर फिर भी दूर है। या अराता है, अब देखो वेद में क्या वार्ता है, जो अराती हैं, जो कंजूस हैं, देते नहीं, भाई अच्छे कामों में कल का जीवन का भरोसा नहीं लगाना चाहिए, किंतु नहीं देते हैं, विद्या भी है तो नहीं देते, विद्या में भी बात घटेगी, विद्या पास में है नहीं बांटते हैं उसको, धन पास में नहीं बांटते, सेवा कर सकते हैं समय लगा सकते हैं वहां, नहीं लगाते दूसरे कामों में, व्यर्थ खो रहे हैं समय, तो ऐसे लोग हैं अराती, तो उनको अभिशंति जम्भया, ये देखो क्या प्रार्थना की है, तो अभिशंति का अर्थ है अभिभवंती, तो इंद्र परमात्मा उसको क्या कर देता है, पराजित कर देता है, कैसे पराजित कर देता है, अगला जन्म तो उनका है ही पराजित ही है, और इस जन्म में भी रोगी हो जाते हैं, दान देने से रोग जाते हैं, आयुर्वेद मानता है, वेद मानता है, अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा तो यहाँ भी दुखी रहेंगे। अब जैसे धीरू भाई अंबानी थे, 64 साल की केवल आयु थी, कितना पैसा था उस काल में, दोनों भाइयों का पैसा एक ही था, तो अकेले थे दुनिया में शायद, पैसा बचा पाया उनको, 4 महीने कोमा में रहे, अमेरिका में के भी डॉक्टर फेल हो गए और यहाँ के भी हो गए, और कोमा में जाने का एक ही अर्थ है कि व्यक्ति ने शरीर के प्रति काफी अधर्म किया है, कोई चोट वोट नहीं लगी थी वैसे ही सामान्य रूप से चले गए, तनाव में बहुत होता है व्यक्ति तब कोमा में जाता है, मन शांति चाहता है, मन शांति चाहता है तो पुरीतत नाम की नाड़ी में प्रवेश कर लेता है, उसी का नाम कोमा है, वो बड़े आराम से निकाला जा सकता है आयुर्वेद की भाषा में, कि उस मन में कुछ ऐसी क्रियाएं करो, उसके पास बाजे बजाओ, सामगान गुआओ, बड़े बड़े हवन करो, ताकि वो कुछ सात्विक भावना है तो मन सोचे कि मेरे लिए कोई कार्य हो रहा है, मन सोचता है कि मुझे कुछ देता तो है ही नहीं, हमेशा वैसी वृत्ति रखता है, तो चलो अपना विश्राम में रहो, तो मन का विश्राम ही कोमा है। और आगे चलो, तम जम्भय नाम है, तम वो जम्भे तो नाशय, ऐसे दुष्ट लोगों को हे इंद्र परमात्मा नष्ट कर दो, क्योंकि ऐसे लोग भूमि पे रहेंगे तो दुखी रहेगा, या तो उनका दान दिला दो, उनको अच्छे कामों में लगा दो, अन्यथा जम भय। अब आचार्य जी ठीक ही कह रहा है ना, वेद कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि वेद कोई हिंसा सिखा रहा है, और वो कौन से हैं, ता अनपनसा, वो रूप से रहित हैं, रूप से रहित कैसे हैं, क्योंकि वो रूप से रहित का यहाँ उपमा है समझो, कि वो रूप से रहित कैसे हैं, जब व्यक्ति दान देता है तो चेहरे पे प्रसन्नता और आनंद रहता है, कंजूस के व्यक्ति पे हमेशा उदासी रहती आप देख लेना, तो वो रूप रहित है, मतलब वो उनका कोई भी मन ना प्रकाशित है ना उनका शरीर प्रकाशित है, तो ऐसे लोगों को जी के भी क्या करेंगे, नाश है। त्वया वयम् सुवर्धित्वा ब्राह्मणस्पते, हे ब्राह्मणस्पते त्वया द्वारा, त्वया कृपया, त्वया बलेन वयम् सुवर्धित्वा बढ़ा करके, बढ़े हुए स्पृहणीयानि वसूनि धनानि, जो स्पर्धा के योग्य धन है, स्पर्धा के योग्य वो हैं जो चाहिए, जिनकी अपेक्षा है। अब बादल से अपेक्षा है कि वो राजस्थान में बरसे, वो समुद्र में बरसता है, तो फिर परमात्मा इंद्र क्या करता है, उसका सारा जल निकाल देता है तोड़ के, किले अब तेरी सत्ता ही समाप्त है, बादल है तो जल है, बादल की सत्ता किससे है, जल से, वो तोड़ दिए, ले अब कुछ भी नहीं है तेरे पास, अब तो बादल ही नहीं बचा, क्योंकि तेरी पूजा इसलिए थी कि जल दे, वो नहीं देता है तो उसको तोड़ देता है, इकट्ठा ले लेता है फिर सारा, अब थोड़ा थोड़ा देता रहता तो बादल भी बना रहता तो वसूनी मनुष्य भय आददिमयी, तो हम मनुष्यों के लिए दे देते हैं, लेके जो जिनके पास ज्यादा है उनसे लेके दे देते हैं। याश्चत्र नो दूर है, जो हमसे दूर है, तड़ी तो यश्च अंतिक है, रात अरात है, जो दूर, ये तो धन तो ही, किंतु जो हमारे कंजूस व्यक्ति हमारे पास है, ये जो हमसे दूर है उसमें भी ये घटेगा, वो कौन है, अरात है, अरात है कौन है, अदान कर्माण है, जिनके दान वाले कर्म अविद्यमान है, दान रूपी कर्म ये साम ताते अदान कर्माण है, अदान प्रज्ञा, जिनकी दान देने में बुद्धि भी नहीं है। किसी ने मुझे एक बार, हाँ बलहारा जी ने एक कथा बताई, अच्छी कथा है, कि भाई कोई दान मांगने गए कार्यक्रम के लिए, किसी के लिए गुरुकुल आदि के लिए, वो बहुत दान देते हैं बलहारा जी, गुरुकुलों में भेजते रहते हैं, तो एक के पास कोई ले गया कि भाई उसके पास बहुत धन है, तो दो चार बोरी नाश तो दे ही देगा, उसके पैसे दे देगा गुरुकुल के लिए, तो गए तो बोले जी ठीक है, समझाया, कह रहे लाता हूँ, वैसे तो मैं देता नहीं पर आप आए हैं तो मैं दे देता हूँ, तो गए तिजोरी में, तो आधा घंटे तक नहीं आए, फिर वो व्यक्ति गया जो बलहारा जी को लेगा, कहते भाई क्यों नहीं ला रहे, इतनी देर में बैठ रहेंगे, और भी आगे जाना है, तो बोले जी मैं दान नहीं दे सकता, जैसे ही पैसे के उठाता हूँ तुरंत होता है क्यों दे रहा है, उठाता हूँ रखता हूँ इसलिए आधा घंटे लग गया, और अब निर्णय मेरे मन का यह है कि मैं दान नहीं दे सकता इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तो ऐसे लोग कौन है, तो इंद्र क्या करेगा उनका, अगले जन्म में दूध मांगेंगे और थप्पड़ मिलेंगे, ऐसे कोड़ी के कलंकी के घर में, पक्की बात है, इतना पैसा होते हुए भी नहीं दे रहा, बहुत पैसा है, तो ऐसा क्या होगा फिर उनको। अब देखो वेद की आज्ञा है, निरुक्त या ऋषि का अर्थ है, कोई मनुष्य का नहीं है कि कोई कहे भाई गलत व्याख्या कर रहे हैं आप, उनका अर्थ है। वो कौन है अराती, अरातय अभिशंति जम्भया, किनको जम्भया, अरातय, ये अरातय संति, उनको मारो। तो अरातय अदान कर्म, जो दान वाले जिनके कर्म नहीं है, और अदान प्रज्ञ, दान देने में बुद्धि भी, कर्म तो दान वाले हैं किंतु दान देने के लिए अब कुछ है ही नहीं, तो और दूसरा अदान प्रज्ञा की कभी भी उनकी बुद्धि भी इस प्रकार की नहीं है। जम भय ता अनपनस अपने इति रूप नाम है, अर्थात जो रूपवान नहीं है, दुष्ट लोग हैं, उनको आप नष्ट कर दो, ये परमात्मा ने मंत्र में विद्या बताई है, पर ये राजा का काम है, हमारा और आपका काम नहीं, ये बात ध्यान देने की है। ये राज धर्म है ना, ना ना, राजा जिसको हमने चुन के भेजा है, अभी मोदी जी हैं, और वैदिक परंपरा में ये लोकतंत्र नहीं है, सामान्य रूप से लोकतंत्र तो है, पर ये हर व्यक्ति की वोटिंग हो जाएगी। अब एक तो मेरी वोट है, एक आप लोगों की वोट है, आचार्य धर्मवीर जी की वोट है, आचार्य जी की वोट है, और एक मजदूर की वोट है जिसको पता नहीं वोट क्या है, एक पागल की है, तो क्या सबकी समान होनी चाहिए? हमारी वोट की कीमत 10,000 होनी चाहिए, 10,000 वोटों के बाद हमारी एक वोट है, किंतु हमारी भी वही है, तो ऐसे ऐसा ये वैदिक परंपरा में, यहाँ इसलिए मूर्ख भी जीत जाता है। आगे चलो, विद्युत तड़ित भवती थी, अब तड़ित का नाम और बता रहे, विद्युत को भी तड़ित बोला है, क्योंकि ताड़ियती थी सतह, और वो विद्युत दूर भी है हमसे, पास में थोड़े, पास में गिरेंगे तो हम ही नहीं होंगे। इति शाकपुनी, शाकपुनी आचार्य निरुक्ताचार्य से मानता है, सा ही अवताड़यति मनुष्यान पशुन इत्यादय दूराच्य दृश्यते, किंतु इसका तड़ित कर दूर भी है तो दूर से दिखाई देती है। अपि तो इदम अंतिक नाम है अभिप्रेतम साथ, चलो दूर तो दिखाई देती है पर वो नाम तो अंतिक में ही मानना पड़ेगा। दूरे चित संत नहीं, दूरे चित संत तड़ित अतिरोच से, दूरे होते हुए चितपि सन भवन तड़ित इव अति रोचते, जैसे विद्युत है ना वो दूर होते भी रुचिकर दिखाई देती अच्छी लगती है ना, ऐसे ही किसी के बारे में बताया कि ऐसे ही आप जो है हमसे दूर तो हैं किंतु हमारे हृदय में भी हैं। ऐसा होता है जिनसे हमारी मित्रता है, अब एक आर्य हमें मिल जाए अमेरिका में, हम गए अमेरिका तो हमें क्या लगेगा, अंतिक है हमारा ही अपना है। और एक मुल्ला मिल जाए तो यहाँ पास में बैठे हुए, सीधी बात है जो मन की बात है तो मनोविज्ञान है उसे हम अपना वो, हम एक मंदिर में तो रुक जाएंगे पर क्या हम मस्जिद में रुकने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि वहां भले ही मस्जिद हमारे पास में और मंदिर 10 किलोमीटर दूर है तो भी हमें वो अपना लगता है, ध्यान देने की बात है। तो यही बता रहे हैं, दूरे अपि सन अंतिके सन दृश्यते, भाई आप भले ही आप कहते हैं ना भाई हम तो आपसे इतने दूर बैठे, भाई आप हमसे दूर कहाँ हैं, जिस बात को आप कर रहे हैं उसको हम चाहते हैं तो आप हमारे पास में ही हैं। वज्र नामानि उत्तराणि अष्टादश, 18 वज्र के नाम है, हथियार जो फेंकने वाले हैं वेद में उनके 18 नाम, मतलब 18 प्रकार के हथियार वेद में जो फेंके जाते हैं दूर से उनका नाम वज्र है। हाँ अस्त्र जो है, शस्त्र तो जो है हाथ में लेकर लड़ा जाता है, वज्र का मतलब जो दूसरे दूर से फेंका जाता है। वज्र अकस्मात वर्जयति इति सत, वो व्यक्ति को प्राणों का वर्जन कर देता है, मतलब शरीर से प्राणों को अलग कर देता है, हटा देता है, इसलिए उसको वो फैल नहीं होता। ध्यान देने की बात है, वैदिक वज्र जो है वो सेना के ऊपर फेंका जाएगा तो सेना नहीं बचेगी, व्यक्ति के ऊपर फेंका जाएगा तो व्यक्ति नहीं बचेगा, मतलब वो वर्ज्यति इति सत, क्योंकि निर्वचन उसी बात को कह रहा है कि वो एक बार लगता है तो छोड़ता नहीं, इसलिए सुदर्शन चक्र जब चलता था वो वज्र था तो वो खाली नहीं आता था। उसमें क्या था, वो वायु तरंगों से चलता था, सूर्य किरणें भी तो एक प्रकार से वायु की तरंगे, नहीं तो वायु के बिना तो कोई गति हो नहीं सकती ना, कहीं आना जाना जो है, तो उसमें वो ऐसी तकनीक होती थी कि उसमें वो सूर्य रश्मियों को से चार्जिंग हो गया, अब उसका बस बटन दबाना था लक्षित करके, और उसमें चित्र भी छोड़ देते थे किसको फेंकना है, वो भावनाओं से भी चलता था। बहुत से वज्र ऐसे हैं जो मंत्र से भी चलते हैं, आज तक इनकी कल्पना नहीं हो सकती, मतलब मन से चलने, मैंने मन में विचार किया और वहां रखा हुआ वज्र एक्टिवेट हो गया, मतलब चलित हो गया है? हाँ तो वो शब्द बाण तो था ही अपनी इतिहास में प्रसिद्ध कसा है श्रवण, नहीं ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ, कभी आप ऐसे में पाखंड नहीं फैला रहा हूँ, पर ये सत्य है कि शब्द विद्या क्या है, ध्वनि तरंगे, उनसे वो चलता है एक्टिवेट हो जाता है इसे बैठे बैठे, उसमें ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे मन की तरंगों से वो पहचान कर लेता है। अभी तो विज्ञान प्रारंभ है ना, अभी आपको कल्पना लग रही होगी, ये विज्ञान तो अभी प्रारंभ है, मन से तरंगे हैं या नहीं, हमारे हाथों से तरंगे निकल रही नहीं निकल रही, बहुत तीव्र गति से निकल रही, वेद तो ऐसा मानता है, अयम्य अस्तो भगवान अयम्य भगवत्तर अयम्य विश्व भेजो एम शिवा भी, तो इसमें क्या है, वो तरंगे हैं सब कुछ, तो ऐसे हाथ किया मतलब हमने अपनी तरंगों को ऊर्जा को हाथ में इकट्ठा कर लिया और ऐसे किया तो तरंगे गए और वो एक्टिवेट हो गया, वहां से वो चालू हो गया, अभी तो एक कल्पना होगी पर भविष्य में हो जाएगा। अगर मैं अपने हाथ में ऐसी ताकत कर लूं ऐसे किया तो आप वहां जाके बैठेंगे थोड़ी देर में, मतलब सेकंड लगेंगे
उड़ के जाएंगे।
अच्छा बिल्कुल संभव है, मैं तो इन चीजों को असंभव नहीं मानता, योग दर्शन में जो लिखे हैं कुछ बातें तो छोड़ दो कि वो जमीन में कैसे डुबकी लगाएगा, वो तो मेरे को समझ में नहीं आ रही है, आध्यात्मिक तो घट जाएगा पर बाकी उड़ना है, गायब होना है, समुद्र पे दौड़ना है जमीन की तरह, तो सब सामान्य है, तो हो सकता है किया हुआ है ऋषि मुनि, करके ही तो लिखा हुआ है, हुआ है जो पहले चीज हो चुकी है, और वेद मंत्रों में विद्या है, आयुर्वेद में विद्या है, तो क्यों नहीं होगा? सिद्धि 8 प्रकार की आयुर्वेद में, उसमें ये भी है। आगे चले, पूरा नहीं होगा, नहीं अब बातें ना करें, ये पूरा करना है पाद। तो यहाँ तक बात खुल गई। अब जो है वज्र की बात चल रही है, तत्र कुत्स इति एतत् कृन्तते। कुत्स वज्र नाम में पड़ा, जल्दी से बोलो। दिद्युत नेमी हेति नम सर्क वृक कुत्स, कुत्स पड़ा हुआ ना, तो कुत्स वज्र का भी नाम है। तो तत्र कुत्स इति एतत् कृन्तते, किस धातु से बना? कर्तयति छेदयति मारयति ताड़यति इति कुत्स वज्र। ऋषि कुत्सो भवति, किंतु वेद मंत्रों में भी कुछ शब्द आया ऋषि के पर्यायवाची में, उसको कैसे कहेंगे? वो क्या ऐसा काम करता है ऋषि वज्र वाला? तो वो भी करता है, क्योंकि ऋषि क्या करता है? असुरों को नष्ट करता है और ऐसे अपने विद्यार्थियों को तैयार करता है। कर्ता स्तोमा नाम इति उपमन्यव। तो यहाँ कैसे घटेगा? ये भी कृति छेद नहीं धातु से बना है, किंतु ये स्तोमो का करता है। स्तूयते अनेन इति स्तोम, एक होता है वेद में स्तोम और एक होता है शस्त्र। शस्त्र जो ऋग्वेद वाले करते हैं वो शस्त्र है, और जो सामगान वाले करते हैं वो स्तोम है, समुदाय मंत्रों का, उसको स्तोम बोलते हैं। तो कर्ता स्तोमो नाम इति उपमन्यव, ऐसा कहते हैं, इसलिए वो कुत्स है। वाप्यस्य वधकर्मा ये भवति, किंतु इसको भी वधकर्मा मान ले तो क्या दिक्कत है? क्योंकि ये ध्यान देने की बात है, कुत्स जो है ना इंद्र का साथी है, ये इंद्र तो राजा है, उसका पुरोहित है कुछ जो नित्य पदार्थों में। आपको लगता है कि नित्य पदार्थों में जो इंद्र है उसका पुरोहित भी होगा, उसका मंत्री भी है, उसकी सेना भी है? चलो देवत कांड में देखते हैं, उसका पूरा एक साम्राज्य है देवताओं का, उसके मंत्री है, उपमंत्री है, मंत्रिमंडल है, सारा चल रहा है, तभी यह संसार व्यवस्थित चल सकता, नहीं नहीं चल सकता। तो वही कह रहे हैं कि वधकर्म ये भवति तत्सख इंद्र सुष्णम जगान है, तो उसने तत्सख इंद्र, इंद्र सखा यस्य, इंद्र से सखा या इंद्र सखा यस्य से तत्सख कौन है? वो कुत्स है, और वो उसका सखा कौन है? वो इंद्र है। सुष्णम जगान है, उसने अपने बल से क्या है, मेघ को मार दिया। शोषित आरम, जो लोगों को कष्ट दे रहा था, जल को तो सुखा लिया था, अपने पास में रख लिया और बाट नहीं रहा था, तो उसने मार दिया। ऐश्वर्य कर्माण उत्तरे धातु चत्वार, संसार में ऐश्वर्य कब होगा? जब कंजूस लोग नहीं होंगे, इसलिए ऐश्वर्य कर्मा बाद में पड़ा है। क्या बता रहे हैं बोलो?
मैं सोचता था कि वज्र से सिर्फ अस्त्री क्यों दिया, शस्त्र क्यों नहीं दिया, ऐसा तो कोई दिखने लगा।
जो छोड़ा जाता है,
छोड़ा जाता है, वो भी
हाँ, तो वो वर्ज्यती से वही तो निकल रहा है, इसलिए तो वो है ना वज्र, इसलिए है कि वो छोड़ा जाता है, तो वो अस्त्र में आएगा, शस्त्र में कैसे? और शस्त्र में छोटी मोटी चीजों की इतनी महत्ता थोड़ी बताएंगे, है वो तलवार है, वो तो सामान्य लोग भी रखते हैं, चाकू है, लाठियां हैं, वो वेद में ऐसी विशेष वार्ता बताते हैं ना, सामान्य थोड़ा ही, सामान्य तो हो जाती है, बताई नहीं जाती, सामान्य जीवन तो व्यक्ति जी लेता है, अपने आप हो जाता है, विशेष का पता ना हो तो। अब जब आपके पास वज्र है, आप लाठी का प्रयोग थोड़ी करेंगे, हैं? करेंगे क्या? आपके पास भी तो हो सकता है, आगे आध्यात्मिक व्याख्या भी करनी है, आगे पाठ करें। ऐश्वर्य कर्माण उत्तरे धात्व चत्वारे, जब कंजूस व्यक्ति नहीं रहते, दुष्ट व्यक्ति का विनाश हो जाता है, तभी ऐश्वर्य होता है दुनिया में, या नहीं? अगर हमारे मन में राग द्वेष ईर्ष्या मोह क्रोध होंगे तो क्या ऐश्वर्य पैदा होगा मन में? क्या मन अपनी शक्तियों को जगा पाएगा? सीधी बात है, नहीं जगा पाएगा। और दुष्ट लोग, आतंकवादी, देशद्रोही, गद्दार और अनेक मत संप्रदाय वाले लोग रहेंगे तो क्या ऐश्वर्य रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए कहीं भुखमरी है, कहीं कुत्ते भी बेचारे वहां बेडरूम में सो रहे हैं, कहीं बेचारे लोग रोड पे सो रहे हैं, देखा होगा ना शहरों में कभी सो के देखो कैसे लोग कष्ट में जी रहे हैं, और एक लोग एसी गाड़ी में, कुत्ता चल रहा है बेचारा, पैदल चलने को भी नहीं है। तो ये वैदिक परंपरा में नहीं है, अंतिम व्यक्ति तक हमारी सारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, यही वैदिक राज्य है, यही वैदिक राज्य की कल्पना है कि वहां किसी प्राणी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए, मनुष्य की तो बात छोड़ो। तो क्या ऐसा हो सकता है? पहले ऐसा हुआ, भविष्य में ऐसा हो सकता है, अगर आप लोग वेद पढ़ के ऋषि बन जाओ और ये कार्य करो, दुनिया सुनने के लिए बैठी। तो ऐश्वर्य कब आता है? जब ये सारी चीजें हो जाती है, कंजूस व्यक्ति नहीं होते और इंद्र के हाथ में वज्र रहता है तो दुष्ट लोग डर रहते हैं, दुष्टता नहीं दिखा पाते, तब ऐश्वर्य पैदा होता। और ऐश्वर्य है तो ईश्वर की महत्ता है, तो आगे ईश्वर को बता रहे हैं। ऐश्वर्य किसका है? ईश्वर का है। तो ईश्वर नामानी उत्तराणी चत्वारी, ईश्वर के चार नाम है, राष्ट्री अर्य न्यूतवान इन, ये चार ईश्वर के नाम है वेद में। तो राष्ट्री राष्ट्र अस्यास्तीति, राष्ट्री राष्ट्र का स्वामी, और राजतेसो राष्ट्र। और देखिए ध्यान देने की बात है, जो राजा होता है ना वैदिक परंपरा में, वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। जो काम ईश्वर करता है, ईश्वर क्या कहता है, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि, तो राजा को देखना पड़ेगा। और ईश्वर क्या कहता है, उत्तिष्ठ सन्नद्धम उदारा के, तुम दुष्टों के घर में जाके मारो, जो दुष्ट देश है हमारे ऊपर हमला करना चाह रहा है, तो ये काम राजा को, क्योंकि वो राजा का प्रतिनिधि है। वेद के अनुसार राजा कैसा होना चाहिए, राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है, तो राष्ट्रीय है, राष्ट्र का मालिक ईश्वर, ब्रह्मांड का मालिक है, तो उसको वही होना चाहिए जो ईश्वर ने आज्ञा दी उसका, उसको, और वो चारों वेदों का विद्वान भी होना, ये भी वेद की आज्ञा है। सेनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्व च सर्व लोकाधिपत्यम च वेद शास्त्रविद अर्हति, हम सारे लोकों के स्वामी थे जब हम वेद के पति थे। नाम की बात नहीं चल रही है, आप नाम में लिया थे। जब हम सारे लोगों के स्वामी थे, और तब कब हो सकते हैं सारे ब्रह्मांड के स्वामी, जब वेद को पढ़ेंगे। केवल पढ़ना नहीं, जीवन में भी उतारना है। ऋग्वेद का ये तत्रेनम इत्येतत् सनीते ऐश्वर्येण इति, अब इसका इनह, इनह की निर्वचन कर रहे हैं, तत्र इनह इत्यस्य निर्वचनम क्रियते, तत्र एनम इनम इत्येतत् सनीते ऐश्वर्येण इनम व्याख्याम, ऐसा कल्पना करो यहाँ, तत्र इनम कस्मात, तो ऐश्वर्य सनीते ऐश्वर्येण, ऐश्वर्य से वो सनीते नाम है संयुक्त है, उसके पास ऐश्वर्य है, बुद्धि का ऐश्वर्य है, बल का ऐश्वर्य है, विद्या का ऐश्वर्य है, धन का ऐश्वर्य है, छह प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं वो उसके पास हैं, इसलिए वही बन सकता है देश का स्वामी। मनमोहन सिंह इस योग्य था ही नहीं, 10 साल तक हमारे ऊपर शासन कर गया। क्या मनमोहन सिंह जी इस योग्य थे? प्रधानमंत्री हैं जी, तो देखो बोलना पड़ेगा, हम आर्यों की अपनी परंपरा ना छोड़ें, मतलब निंदा भी करें तो जी लगा के करें,
जी लगा के करें ना, तो करें ना, निंदा करें तो जी लगा के करें।
हाँ,
दिग्विजय तो आ रहे हैं, इस पक्का मतलब
आगे चलो।
तो साहब जी बोलता
है सनीतम अनेन ऐश्वर्यम, दूसरी बात और है कि इसके, ये इसके पास, पहली बात क्या होगी कि सनीता संभक्त ऐश्वर्य ने, ऐश्वर्य के द्वारा जुड़ा हुआ है, किंतु दूसरा निर्वचन क्या है, सनीतम अनेन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य उसके पास आ रहा है। ध्यान देने की बात है, जिसके पास बुद्धि आ जाती है, शास्त्र का ज्ञान आ जाता है, ऐश्वर्य अपने आप आता नहीं आता, विद्या कैसे ढूंढती है, ईश्वर भी ढूंढ रहा है ऐसे व्यक्ति को, कैसे ढूंढ रहा है, तम ऋषि ढूंढ रहा है कि भाई कोई ऐसा मिल जाए, है ना,
बनाया ही होगा उनको, उसको तो पता होगा,
तो सबको जानता है ना
कि क्या जरूरत
है,
सबके नाम बता ना,
उसमें आपने बनाया है,
सबके नाम स्थान जन्मों को जानता है,
वो तो जानता तो है, पर वो ये कह रहा है ना कि ऐसे बनोगे तो मैं ऋषि बनाने के लिए बैठा हूँ। मंत्र क्या कह रहा है, तम ऋषि, मैं उसको ऋषि बनाने के लिए बैठा हूँ, तो मतलब ढूंढ ही रहा है, बैठा हुआ है प्रतीक्षा में कोई आ जाए। तो ये भाषा है, अर्थ तो आप समझ रहे हैं ना, ये भाषा का सौंदर्य है। आगे चलो, यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागम, अब इसका अर्थ बता रहे हैं, इन्हें को खोल रहे हैं, मंत्र में कहाँ आए ईश्वर के बारे में, यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागम अनिमेषम विदिता अभी स्वरंती इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपा सहमाधीर पाकम अत्राव्यवेश। अब बोर्ड पे ध्यान रखिए सारे, क्या लिखा हुआ है वहां, सबसे पहले मंत्रार्थस्य त्रिधा गति अर्थात त्रैविध्यम वर्तते इति शेष है। मंत्र की गति तीन प्रकार से होती है, सभी की नहीं, अधिकतम की। आधी देवी का इसमें कोष्ट में क्या लिखा हुआ है, वैज्ञानिक। आधी देवी का अर्थ क्या होता है, वैज्ञानिक। आश्वी देवी कहाँ? आदि देवी के लिखा हुआ आध्यात्मिक अंत विज्ञानम। आध्यात्मिक क्या है? अंत विज्ञान, जो अंदर का विज्ञान है, जो हमारे शरीर में घटना होने वाली है, हो रही है, वो आध्यात्मिक विज्ञान में आएगी। जो घटना अंतरिक्ष में पृथ्वी से लेकर द्युलोक तक हो रही है या हो चुकी है या होगी, वो सारी आधिदेविक यानी वैज्ञानिक रूप में आएगा। इसको अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे, क्या कहते हैं, आदि भौतिक है। तीसरा विभाग है मंत्र का आदि भौतिक है। भूतेभ्य अधिकृत्य, जो घटना व्यावहारिक है, जो पृथ्वी पे पृथ्वी लोक में हो रही है और मनुष्यों में जो घट रही है, वो क्या है? आदिदेविक। इसमें अग्निकार्त आचार्य भी होगा, अग्निकार्त सेनापति भी होगा, इसको घटाते हैं। अग्निकार्त अग्नि एक देवता है, उसको लेते हैं। आदिदेविक में अग्निकार्त क्या होगा? सीधा अग्नि का अर्थ होगा एक पदार्थ, दिव्य पदार्थ, एक देवता। वो सूर्य भी होगा, वो विद्युत भी होगी और वो किरणें भी होंगी, वो पृथ्वी के अंदर जो खरबों टन अग्नि भरी हुई है वो भी होगी, ठीक है। और ये जो यज्ञ की अग्नि है ये नहीं होगी, ये आएगा आदि भौतिक में, मतलब जिसको हम व्यवहार में प्रयोग कर रहे हैं ये उसमें आएगा। ये समझ में आ गया? अब आध्यात्मिक, आध्यात्मिक में अग्नि क्या होगा? शरीर में जो घटना घटित हो रही है उसका नाम आध्यात्मिक है, ध्यान देने की 100% बात। ये आगे या सातवें कांड में ये सीखेंगे। जो हमारे शरीर में घटना, शरीर में क्या है? अंतःकरण है। शरीर में क्या है? प्राण है। शरीर में क्या है? रक्त है। और ये सारी घटना जिस चीज की हमें और ले जा रही है उसका नाम है आत्मा। आत्मानम अधिकृत्य वर्तते अभिमुखेन वर्तते इति अध्यात्म। समझ में आ गया? हैं? जठराग्नि को अध्यात्म में ही मानेंगे। हाँ, जो भी शरीर में घटना हो रही है वो अध्यात्म है। देश द्वयात्मानौ शरीरात्मा अंतरात्मा च। शरीरात्मा यत् कर्म करोति अंतरात्मा तदनुभवति। अंतरात्मा यत् कर्म करोति शरीरात्मा तदनुभवति। भाष्यकार ने कहा वो उसी से घटेगा। शरीर को भी उन्होंने आत्मा माना है, तो आत्मानम अधिकृत्य वर्तते इति अध्यात्म। तीसरी घटना आदि भौतिक हो गई है। जो घटना उस देवता के अंदर जो गुण है, वो गुण यदि किसी व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो होगा व्यवहारिक अर्थ यानी आदि भौतिक अर्थ। ये समझ गए?
पांच भूति आएंगी इससे, पांच भूति
लेंगे। वो तो उसमें आ गया, वो सब उसमें आ गया, आदिदेव में, आदिदेव आदिदेविक में आ गया, जो यहाँ आप क्रिया में विनियोग कर रहे हैं। जैसे एक आचार्य है या सन्यासी लगा लें, एक सन्यासी है, सन्यासी के अंदर अग्नि के गुण हैं। अग्नि क्या क्या काम करती है? अग्रणी भवति, अग्रम यज्ञेषु पण्यते, अंगम नयति, अंगति जानाति प्राप्यति इति अग्नि। यदि वो विद्वान है, प्रचार कर रहे हैं, 200 अग्नि का एक गुण क्या है? प्रकाश देती है और 200 को जलाती है, तो सन्यासी अग्नि है। अब अग्नि मीड़े का अर्थ क्या होगा? अभी ज्यादा लंबी चर्चा होगी, रह जाएगा, मैं तो अभी मोटा मोटा बता रहा हूँ, इस पे आते हैं। तो यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागम। अब यहाँ इन्हें शब्द को घटाना है। यत्रा यस्मिन स्थाने आसमंतात सुपर्णा शोभनानी परणानी यस्य अमृतस्य। अमृत क्या होता है किसी को पता है? मृत न अमृत। अविद्यमान मृत मरण धर्म यत्र तद अमृतम। जहां मरने की संभावना नहीं है, उसको जो पी लेता है उसको मरने की संभावना नहीं, और जो खुद भी नहीं मरता, न मृियते न मारियति इति अमृतम, ना मारता है ना मरने देता है। तो अमृतस्य भागम, भागम नाम है भजनीयम सेवनीयम। आपने भागे की सिद्धि सबसे पहले करते हैं। अनिमेषम, निमेषम ये निमेष है, आंख बंद करी और खोली, तो अनिमेषम बिना रुके, मतलब कभी भी झपकी नहीं लेते, निरंतरेण विदथा भी, विदथा अभिस्वरंती, विदथा कर्म के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, और विदता प्रज्ञा नाम में पढ़ा हुआ है, अपने ज्ञान के द्वारा। अभिस्वरंती, अभिता स्वरंती नाम है, स्वरी उपतापयो, तपारी हैं जल को। इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपा, इन्हें ईश्वर है, ऐश्वर्यशाली पदार्थ हुआ, विश्वस्य संपूर्णस्य ब्रह्मांडस्य गुणस्य लोकलोकांतरस्य गोपा गोपायति रक्षति इति गोपा रक्षक है स इदानीं पर्यंतम तो प्रशंसा आसीत। अब उस प्रशंसा करके हमें क्या मिलेगा वो बता रहे। पहले तो पदार्थ के गुण जानो, तो वो क्या क्या कर रहे हो जान लिया पहले मंत्र के भाग से। अब उन गुणों को अपने अंदर धारण कर रहा है, वो बता रहे हैं स मा स एव इन विश्वस्य भुवनस्य यह गोपा वर्तते स इन मा मम शरीरे मेरी ओर धीर। यहाँ निषेध अर्थ है या मा का अर्थ दो होते हैं, निषेध है, निषेध होगा तो यहाँ सीधी पहचान है, उदात्त होना चाहिए था। मंत्र की पहचान बहुत बार बता चुकी, यदि ये उदात्त होता तो क्या होता है निषेध अर्थ होता, ये अनुदात्त है इसलिए मा मुझको अर्थ है। तो स मा मुझको धीर है, धीर कौन है दधाती धारियती पोषयती दूर्धा धारण पोषण। तो वो धीर जो है पक्वम, पक्वम नहीं पाकम, पाकम नाम है पक, उसका पक्व रूप है जो मुझ धीर पाक पचे हुए को या उसके पाक रूप को अत्राविवेश मम शरीरे प्रवेशम करो तू इत्यर्थ। अब ये पता नहीं लगा ये है कौन, हमने अर्थ तो कर लिया। अब ये घटना दो जगह घट रही है, मैंने जो आपको बार बार बताता हूं कि अर्थ तीन प्रकार से कैसे घटते हैं, यदि घटना तीन जगह घटने की संभावना है तो अर्थ तीन प्रकार के होंगे, यदि घटना दो जगह घट रही है तो अर्थ दो प्रकार के होंगे। यास्काचार्य का पक्ष जो है वो तीन में भी रहता है और दो में अधिकतर रहता है, क्योंकि ये दो ही मुख्य घटना, बाकी तो व्यावहारिक तो हमारे लोक में चल ही रहा है। अब इसको दो जगह घटाना है, इन्हीं की व्याख्या देख लेते हैं, सुस्पष्ट हो जाएगा। यत्र सुपर्णः सुपत्नः आदित्य रश्मयः। अब इन कौन है यहाँ, भुवनस्य गोप है आदित्य है सूर्य, ध्यान देने की बात है। अब जो है ईश्वर नहीं है, कौन है सूर्य है। यत्र सुपर्णा, सुपर्णा नाम है सुष्टु प्रणानी पतन गमनशीला, सुपर्णा सुपत्ना अच्छी प्रकार गिरने वाली, सुपत्ना का अर्थ है सु अभिपूजित अर्थ है, वो पूजनीय है हमारे लिए रश्मियाँ क्योंकि हमें जीवन दे रही है। आदित्य रश्मया, आदित्य की जो रश्मिया है अमृतस्य भागम, अमृत उदक नाम में पड़ा हुआ है, उदकस्य भागम यहां से उदक लिया पूरा नहीं लिया, उसके तत्व को लिया, जो मूल तत्व है उदक जिससे बना है सूर्य रश्मिया उसको ढोती है, उसको यहां से ग्रहण किया, देखो कितना भारी विज्ञान है, उसको यहां से खींचा और कहां लेके जाती है वो बता रहे हैं आगे। अनिमिषंत है, ये कभी भी पलक नहीं झपाती है, अपने निरंतर कार्यों में लगी हुई है। वेदने न अभिस्वरंती, ध्यान देने की बात है इनको जान है, आप इनको जड़ तो मानते हो, कंप्यूटर भी जड़ है पर इसको जान है, जान है या नहीं, कंप्यूटर को जान नहीं, तो इसने मेरी आवाज को वहां कैसे पहुंचा रहा है दिल्ली हैदर पूना, जान हुआ या नहीं हुआ। अब आपने कहीं देखा नहीं है ना फिंगरप्रिंट है, कई जगह ऐसी जगह जाते हैं जहां फिंगरप्रिंट लेते हैं फिर घुसने देते हैं अंदर, तो फिंगरप्रिंट को कैसे उस दरवाजे ने समझा कि इसी के फिंगरप्रिंट है दूसरे के नहीं, मेरे को बताओ अगर उसको जान नहीं है तो आप हेतु दो इसमें कि ये हेतु से होता है। आप ये बोल दो आदमी ने तो बना के छोड़ दिया, अब अगर आपके फिंगरप्रिंट हैं तो ये वो दरवाजा खुलेगा नहीं तो नहीं खुलेगा, वो यहाँ तो विदेशों में तो नंबर डालते हैं दरवाजे में, वो तभी खुलता है नहीं नहीं खुलता, आजकल तो होटलों में ऐसे कार्ड आ गए हैं वो ताले वाले हैं ही नहीं, कार्ड स्वीप किया दरवाजा खुल गया, नहीं किया दूसरा कार्ड लगा लो उससे नहीं खुलता, तो दरवाजा कैसे समझता है कि मैं ही खुलूं दूसरा नहीं खुलेगा, ताला है और अपना लोकल ताला ही लगा लो देसी, वो दूसरी चाबी लगाओगे नहीं खुलता, वो समझता क्यों है नहीं कि ये खोलना चाह रहा है मेरा ही व्यक्ति है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सी चीजें आप मास्टर चाबी को लगा लो और वो जो फिंगरप्रिंट वाला दरवाजा खोल के बताओ बिल्कुल नहीं खुल सकता, उसमें वो उपाय नहीं होता कि मास्टर जगह हो तो खुले, उसमें तो घुसने की जगह ही नहीं है कहीं,
फिंगरप्रिंट मिल जाएगा
मिल ही नहीं सकता किसी का फिंगरप्रिंट, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता ईश्वर के बनाए हुए हैं, ना आंखों का रेटिना मिल सकता, इतना बड़ी डाई है उसके पास, कितने मनुष्य रोज पैदा हो रहे हैं मर रहे हैं पर सबके अलग अलग हैं, कितना बड़ा वैज्ञानिक है वो। आगे चलो, तो ये कह रहे हैं वेदने ने रश्मियों को जान है कि हमें कहाँ पहुंचाना है, कौन सी रश्मि तो जाएगी चंद्रमा पे, कौन सी यहाँ आएगी, कौन सी लेके जाएगी और कौन सी पृथ्वी पे रह जाएगी, ये स्वाभाविक सॉफ्टवेयर ईश्वर ने डाला हुआ है, तो इसका मतलब उनको वैसे जान नहीं है स्वाभाविक, पर जैसे कंप्यूटर काम करता है वैसे ईश्वर ने उनको स्वाभाविक जान दिया हुआ है। नहीं तो वेदने ने शब्द नहीं आता है, वेदने ने नाम है वेदना, कौन सा कहां से लेना है। वह अभिप्रयंती उसके द्वारा वो अभिता प्रकर्षण यंती उसको लेके सीधा वहां चली जाती है आदित्य लोक में, वहां तपाती है। वह ईश्वर है सर्वेशाम, ये सभी का स्वामी है। कौन? सूर्य। भूता नाम, क्योंकि हमारा सूर्य ना हो तो किसी का भी जीवन नहीं चलेगा। भूता नाम गोपायिता आदित्य, सारे प्राणियों का रक्षा किससे हो रही है? भाई चंद्रमा तो केवल सूर्य की तो भी रश्मि को लेके हमें दे रहा है, उसका तो अपना तो कुछ है ही नहीं, तो रक्षा तो यही कर रहा है। स मा धीर पाकम अत्राव्यूह, वह जो धीर है वो मेरे पका हुआ या मेरे मुझ पके हुए को, जो मैं विद्वान हो गया हूं ना उसी को घुसेगा वो आके, वैसे तो कैसे जान होगा उसका, तो जो पक्को है उसको आविवेश है मेरे शरीर में, उसने प्रवेश कर लिया, प्रवेश करे, प्रार्थना कर रहे हैं। धीरो धीमान, धीर कौन होता है? धीमान होता है, जिसके पास बुद्धि होगी उसी के पास धैर्य होगा। और पाक है पक्तव्य भवति, पाक क्या है? वो पक्तव्य है, पका हुआ है या पकाने के योग्य है। कहते हैं ना कि भाई जान व्यक्ति को पका देता है, इसके लोक में तो दो अर्थ है कि भाई जान से पक गया, जान से पक गया कोई दोष नहीं बचा। वी पक्व प्रज्ञा आदित्य, और आदित्य भी पकी हुई प्रज्ञा वाला है, आदित्य को भी पता है कब मुझे क्या काम करना है। इति उपनिषद वर्णो भवति इति अधिदेवतम, ये उपनिषद का रहस्य का वर्णन है, अर्थात ये रहस्यमय विद्या हमने बताई है। ये तो अधिदेव हो गया, अर्थात सूर्य की रश्मियों का विज्ञान हमें पता लग गया कि आदित्य से रश्मियां ऐसे आ रही हैं लेके वहां वापस जा रही हैं, और ये हमारे शरीर में भी आदित्य, ये भी बात ध्यान रखें, आविवेश है उसी आदित्य रश्मियों की, हमने भी प्रार्थना की है कि वो हमारे शरीर में प्रवेश करें। अब आध्यात्म में घटाएंगे, यत्र सुपर्णा सुपतनानी इंद्रियाणी, जो अच्छी प्रकार सुपतनानी आदि रश्मियां किस पे गिरती हैं? जलों पे गिरती हैं, हमारे सबके ऊपर गिरती हैं। और इंद्रियां किस पे गिरती हैं? विषयों पे गिरती हैं, पांच विषय और पांच ही इंद्रियां। यहां आदित्य कौन है? आत्मा है। आत्मा किससे काम करा रहा है? इंद्रियों से करा रहा है, मन के माध्यम से। वहां आदित्य कौन है? आत्मा है, और इन्हें है स्वामी है, और वो किससे काम करा रहा है? रश्मियों से। सुपतनानी इंद्रियाणी अमृतस्य भागम, अमृत कौन है? या देखा, जान कभी मरता नहीं है, सीधी बात है। आपका धन भी नष्ट होगा, आपका शरीर भी होगा, वस्त्र होगा, कंप्यूटर होगा, जो भी कुछ है सबको मरना है, जान कभी अगले जन्म में जल्दी उन्नति हो जाएगी। और जान मरने का तात्पर्य ये भी है कि जो जान आपने पढ़ लिया वो जीवन में भी होना चाहिए, उसके विपरीत ना मरे आप, ये भी इसका अर्थ है। जान तो है, सत्य बोलना चाहिए, और क्या होता है? अमृत नहीं है, जान अमृत नहीं बना है, मतलब ये लगता है कि झूठ बोलने से काम चल जाएगा, तो जान को आप मार रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को। दोनों अर्थ घटते हैं आध्यात्म में। जानस्य अभिनिमशंत भागम अमृतस्य, भागम नाम है जानस्य, भागम अनिमिशंत, बिल्कुल न रोकते हुए, इंद्रियां भी 24 घंटे काम कर रही है, सो जाते हैं तो सपने में काम करती हैं, सारी नहीं करती, कुछ तो करती हैं। वेदने न अभिस्वरंती, अपने जान के अनुसार ही आपको तप करना चाहिए, अपने जान के अनुसार ही आपको जीवन जीना, जान के विपरीत नहीं जीना। वह अभिप्रयंती थी वह ईश्वर है, तो वो अभिप्रयंती ईश्वर है, नाम है आत्मा। अभिप्रयंती अच्छी प्रकार से इंद्रियों के विषयों में गिरता है, प्राप्त करता है। सर्वेशाम इंद्रिया नाम गोपायिता, वो कौन है? आत्मा। स मा धीर है, वह आत्मा जो मैं धीर हूं, पाकम अत्राव, ऐसे मुझे पके हुए मन वाले को प्राप्त हो। धीरो धीमान है, पाक है पक्तव्य भवति है, विपक् प्रज्ञ है, आत्मा इति आत्मगतिम आचष्टे, आत्मा की गति कब है? जब आप अमृत जान को अमृत बना लेते हैं, अन्यथा आप अपने जान के विपरीत जीवन जीते हैं तो आपकी आत्मगति नहीं, आप आत्मा की हत्या कर रहे हैं, इसके बाद विपरीतता क्या है? मरणशील, तो आप मरणशील हैं, फिर मृत हैं आप, रित नहीं है, ये ध्यान देने की बात है। तो इसलिए अपने ज्ञान के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जीवन भी जिए। तो दो प्रकार के अर्थ आज हमने देखे, कौन कौन से? कल भी जो पार्ट है उसमें भी कुछ विशेष बात है, कल आपको सत्य बोलने से क्या लाभ है, सुख कौन है और सुख कहते किसको हैं, ये विशेष वार्ता है। और जो तस्कर आदि हैं, चोर आदि हैं, उनके बारे के भी नाम आएंगे यहाँ, उनके भी नाम है वेद में, तो उनको कैसे ठीक ठाक करें वो भी आएगा। तो पाठ बढ़िया चल रहा है, थोड़ी मेहनत करें और इसको जीने का भी प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। अब एक बार ओम का उच्चारण कर लें। ओ सबका धन्यवाद, नमस्ते। क्योंकि थोड़ा पहले ही कर दिया करेंगे फिर भोजन में विलंब हो जाता है, आप लोग भगे दौड़ में जाते हैं, तो 25 तो अंतिम है और पहले कभी भी हो जाए। एक पात तो कराना है, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा भी करा देंगे, एक तो कराना ही है क्योंकि ये बहुत बड़ा पात, तब आगे छोटे हैं तो हो जाएंगे जल्दी। नमस्ते नमस्ते आचार्य, ठीक लग रहा है आचार्य जी, आनंद आ रहा है? वैसे आप तो रहते ही आनंद में हैं, आनंद में हो गए हैं आप तो।